ओम शांति। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैं 2011 से अवेकनिंग सुनना शुरू हुई थी, वो भी इसलिए बिकॉज मैं सिविल्स क्वालिफाई करना चाहती थी, पहले कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और फिर उसके बाद नेशनल, है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो वो इसलिए क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ग्रीड थी इन सब चीजों की। लाइफ में सब कुछ था, अच्छी जॉब, बच्चे, घर परिवार, सब कुछ, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैंने धीरे धीरे ढूंढ रही थी कुछ। पहले सबसे पहले मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया, बिकॉज मेरी फैमिली में से, इन लॉज में से आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जुड़े हुए, तो मैंने उनकी एक क्रिया होती है, उनकी बेसिक क्रिया होती है, तो उसको मैंने किया। कम से कम भी कोई 90 डेज उसको रिपीट करना होता है, 90 डेज के लिए, तो मैंने करा उसको। रादर वो कोर्सेज भी करवाए जहां मेरी जॉब थी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। रादर मेरे ब्रदर लॉ उसके टीचर है, तो मैं उनको बोला कि जब हम लोग क्रिया करते तो हमें क्या देखना होता है मन से, तो वही बेचारे कुछ एक्सप्लेन नहीं मुझे कर पाए। उन्होंने बोला कि जो भी तुम्हारी इच्छा है ना, वो तुम लेटर लिखो और गुरुजी के फोटो के आगे रख दो। कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने नारायण सेवा संस्थान में भी मैंने चैरिटी में वो भेजा, निर्मल बाबा जी को भी सुना, मना बहुत कुछ किया। मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा देखते थे आस्था चैनल, तो वो इस तरह से देखते रहते थे कुछ ना कुछ, लेकिन मैं यूजुअली दूसरे टीवी चैनल्स वगैरह देखती थी और ज्यादा बेचैन रहती थी बहुत ज्यादा। तो एक दिन वो ऐसे ही देख रहे थे, ओशो का प्रोग्राम आता था उस पर आस्था पर, तो देखते देखते 7-10 बजे आस्था पर, तो अवेकनिंग अचानक से बैठ के देखने के लिए कुछ ऐसी चीज क्लिक होगी माइंड को जो मुझे बहुत साइंटिफिक और लॉजिकल लगी, तो उसको मैंने देखना शुरू किया। और उसको देखने की मुझे इतनी लत पड़ गई कि मैं और मेरी सिस्टर शाम को यूजुअली जाते थे बाजार घूमने के लिए, कुछ खरीदने वगैरह के लिए, तो मैं जैसे 7-10 होते तो मैं उसको बोलती थी आधी शॉपिंग इधर ही छोड़ते चलते हैं वापस। तो वो कई बार बोलती थी कि ये क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। मैंने बोला नहीं नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे देखना है जाकर के। तो मुझे बहुत ज्यादा उसकी, मतलब जिसको कहते ना एक चाह खींच होगी, चाह होगी कि मैं वो चीज देखूंगी, तो मैं चली जाती थी और उसको ना नोट डाउन करना शुरू कर दिया मैंने जो भी उसमें बताया जा रहा था मुझे। धीरे धीरे मुझे जैसे ना वो लॉजिक क्लिक करने लगा, क्योंकि थॉट की पावर हमें कहीं नहीं सिखाई जाती है, कैसे माइंड वर्क करता है वो हमें कहीं बताया नहीं जाता है हमारी पूरी स्टडीज में। तो वहां पर मुझे धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ और कुछ ना कुछ जिसको कहते हैं वही ग्रीड की किस तरह से मेरा, क्योंकि मेरा प्रिलिमिनरी क्वालिफाई हो चुका था कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, अभी मेन्स था मेरा, तो उसमें थोड़ा सा ही समय था, लेकिन एंग्जाइटी मुझे बहुत रहती थी कि दूंगी कि नहीं दूंगी इस बार फिर से ऐसी। तो धीरे धीरे मैंने उसको देखना शुरू किया, और क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन और नहीं था, तो हमारी एक लीव होती है, माना हमारे गवर्नमेंट जॉब में वो 40 डेज की लीव होती है, तो मैंने 40 डेज की लीव मैंने अप्लाई करी, और उन 40 डेज में मैंने वही लॉज जो उसमें बताया जा रही थी अवेकनिंग में वो प्रैक्टिस की है, और पता नहीं घर पर कैसे अपने आप ही योग लगना शुरू हो गया। जैसे पहली बार योग लगा तो वो इतनी सुंदर फीलिंग थी मुझे कि जो मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करी थी। और सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा रोई उस एक्सपीरियंस के साथ, और मैं अभी पता नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा रोई कि जैसे अगर सचमुच ये भगवान है तो ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला, माना ऐसे जैसे उसके साथ फाइट कर रही हूं, लड़ रही हूं, और फिर ग्रीड वही क्या, वो ये ग्रीड ठीक होनी चाहिए, ये फुलफिल होनी चाहिए डिजायर। तो पास मेरे नियर बाय जो ब्रह्मा कुमारी का सेंटर था वहां पर मैंने जाना शुरू किया, दीदी को बताना शुरू किया कि ये ऐसे है ऐसे, क्योंकि वो जो सृष्टि चक्र है वो सत्यनारायण की कथा है, मैंने पहले भी जैसे बताया वो ऑलमोस्ट सारी मुझे क्लियर हो चुकी थी। मेरे हस्बैंड ऑलरेडी बहुत मेडिटेशन करते थे, योगानंदा सत्संग सोसाइटी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन मुझे उनकी बात समझ नहीं आती थी, मुझे यही बात समझ नहीं आई। वो भी इसलिए समझ आना शुरू हुई क्योंकि इससे मेरे को वो पीस ऑफ माइंड फील हुआ और एक तरह का जैसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस बनना शुरू हुआ। तो मैंने थॉट को प्रैक्टिस करना शुरू किया, जैसे मेरे माइंड ने कहना ना मैंने उसको कन्वर्ट करना हाँ में, और साथ में मेडिटेशन करना। और क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड था मेरे पास, 40 डेज थे, तो उसमें मुझे 8 पेपर्स तैयार करने थे सिविल्स के, तो अकॉर्डिंगली मैंने धीरे धीरे वही पढ़ना शुरू किया जो मैंने पढ़ा था, और साथ में प्रैक्टिस करने की इसी पोर्शन में से मुझे आएगा। तो मैं इसको प्रैक्टिस करती गई करती गई। अभी जिस दिन मेरा पहला पेपर था मुझे डर तो बहुत लग रहा था अंदर की, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं था। जैसे मेरे मन ने डाउट क्रिएट करना तो मैंने फिर से वही पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना और कनेक्शन जोड़ लेना, चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ बिंदु के साथ चिपके रहना। और ये मुझे आज ये व्यतीत, क्योंकि उस तरह का पावरफुल योग आज नहीं लगता है, आज मेहनत से लगता है। तो उस समय जैसे ना बाबा आपकी एक नवज देख करके ना आपको खींचता है कि आ जाओ, तुम्हें जो चाहिए मैं देता हूँ, आ जाओ, कम हियर, राइट। हाँ, तो वो ना एक बड़े प्यार से जैसे ना आपको एक जाल में बांध रहा होता है कि आ जाओ जैसे ना। तो वो जैसे मैंने कनेक्शन जोड़ना, मेरा कनेक्शन लग जाना बहुत अच्छे से, गाड़ी में चलते फिरते उठते बैठते। फिर ना मैंने संकल्पों को प्रैक्टिस करना, जैसे एक बार हमारी ट्रेन मिस होने वाली थी माना, ठीक है। तो मैंने हस्बैंड को कहा, मैंने बोला जय नहीं मिस होगी हमारी ट्रेन, मैंने बोला लेट हो गया हम लोग, पक्का ट्रेन मिस हो जाएगी। मैंने बोला ट्रेन मिस नहीं होगी, और मैं कैसे कह रही हूँ ये, वही थॉट और कनेक्शन। और सचमुच वहां पर गए तो लेट ट्रेन चली ही 15 मिनट लेट, माना वहां पर भी ये चीज सिद्ध हुई। जैसे ना वो धीरे धीरे सिद्ध करवा रहा हो कि यही सिद्धि का तरीका है, माना योग का यही तरीका है। तो अकॉर्डिंगली मैंने पेपर्स दिए और 8 मार्च 2012 को मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए उसी विधि के साथ, जिस तरह से ये विधि परमात्मा ने सिखाई थी। और मैं क्या करती थी, एग्जाम्स प्रिपेयर करने से पहले मुरली पढ़ लेती थी, उसमें जो जो शब्द होते थे ना, जैसे मैंने एक पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, दूसरे दिन इंडियन पॉलिटी का पेपर था, तो उसमें मैंने प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर उसमें लिखा हुआ था, प्रधानमंत्री शब्द आया मुरली में, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने सारा कुछ पढ़ लिया, चीफ मिनिस्टर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, उनकी ड्यूटीज, उनका क्या कैसे कैसे वो सारा ना, स्टेट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और इंडियन लेवल की, तो वो सारा कुछ उसी में से पेपर आया थे। मतलब कम से कम भी 80-90% पेपर वहीं से आता था, और यदि थोड़ा सा 10% नहीं आता था तो मैं लड़ती थी उससे, तेरे पर यकीन किया 10% भी नहीं आया, ऐसे करके। जैसे ना उसने मुझे, जैसे ना मतलब मान लो मुझे खुश करने का जैसे उसने सारा बीड़ा उठाया हुआ ऐसे, क्योंकि पता तो था नहीं क्या कर रही हूँ, पर ये पता था कि बिंदु के साथ चिपक जाओ तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, डर खत्म हो जाता है और पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो 8 मार्च 2012 को मेरे सारे पेपर्स खत्म हुए, एग्जाम्स खत्म हुए, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरा इस बार केएस क्वालिफाई हो जाएगा, मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। तो उन्होंने बोला इससे पहले तो आप कभी मेंस में बैठे नहीं, आपको कैसे लगता है। मैंने बोला पक्का इस बार हो जाएगा। तो हम लोग 9th को वहीं, हमारा जो स्टेट का हेडक्वार्टर था हमने वहीं पर स्टे किया। 10th को हम लोग वापस जा रहे थे अपने नेटिव प्लेस की तरफ, जहां मेरी जॉब थी, मेरे हस्बैंड की भी जॉब थी। मेरी गाड़ी में मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी छोटी सिस्टर अपने छोटे बेटे के साथ, और साथ में एक और कुमारी उसके साथ बैठी थी। हम लोग वापस जा रहे थे, तो रास्ते में मुझे किसी काम के लिए उतरना पड़ा, सिटी की तरफ जाना था, उनको बाईपास होकर के उस जगह की तरफ निकलना था जहां पर मेरी पोस्टिंग थी, मेरे हस्बैंड भी वहीं पर पोस्टेड थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप लोकल गाड़ी से चले जाइए, मुझे यहां से जाना है क्योंकि मेरी सेंसस ड्यूटी लगी हुई है, तो मुझे टाइम पे पहुंचना है। रादर मैंने उनको कहा कि मुझे आप उस जगह पर छोड़ दीजिए, वहां से निकल जाइए बाय सिटी, लेकिन वो माने नहीं। तो लेकिन मैं उस समय भी बिंदु रूप में रहती थी, एकदम से चिपकी हुई किस बात के लिए कि मेरा मेंस क्वालिफाई रिजल्ट मेरा बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए, मैं एक मिनट भी मिस नहीं करूंगी कि वो जो विजन है और जो थॉट मैं क्रिएट कर रही हूं वो कहीं इधर धूमिल हो जाए, क्योंकि मैं जैसे बिना उसको क्लिंग किए हुए चिपके हुए थॉट क्रिएट करती थी तो नेगेटिविटी आ जाती थी, जैसे मैं उसको कनेक्शन जोड़ती थी तो वो थॉट में पॉजिटिव थॉट में पावर भर जाती थी, है ना। वो पॉजिटिव पे स्टे रखना, अपने आप को स्थिर रखना, मुझे ताकत मिल जाती थी उसकी। तो मैं उतर गई रास्ते में, रादर मैंने हस्बैंड से थोड़ा सा ऐसे अनॉय भी हुई कि मुझे ऐसे ही छोड़ करके जा रहे हैं और मेरे को लोकल से जाना पड़ रहा है, तो उन्होंने मुझे देखा भी नहीं और वो निकल लिए दूसरी तरफ। मैं पहुंच गई लोकल गाड़ी से जहां पर मुझे जाना था वहां पहुंच गई, लेकिन मेरा जो फोन है वो मेरी गाड़ी में ही रह गया। अब मैं अपने हस्बैंड को कहीं पीसीओ से, मॉर्निंग का समय था, 9:30 हो रहे होंगे, तो पीसीओ ढूंढने लगी, लोकल जो कॉल बूथ होता है उसको ढूंढने लगी, लेकिन कहीं नहीं मिला। किसी की दुकान खुली हुई थी तो उन्होंने बोला कि बच्चे क्या चाहिए आपको, तो मैंने बोला मुझे फोन करना था एक्चुअली अपने हस्बैंड को, मेरा फोन रह गया गाड़ी में। उन्होंने बोला मेरे फोन से कर लो, तो मैंने उनके फोन से कॉल किया तो आगे से मुझे रिप्लाई आया कि आप, किसी और ने उठाया, तो कहते कि आप क्या लगते हैं इनके जिनको आप कॉल कर रहे हैं, तो मैंने बोला ये मेरे हस्बैंड है। उन्होंने बोला मैडम उनको ना थोड़ी सी लगी है, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे, तो जिस डेस्टिनेशन पे मैं जा रही थी जिस काम के लिए तो वो तो भूल गया, मैं वहीं से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ओर चली गई। जब मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंची तो मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर दोनों ही आईसीयू में थे, माना वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का इतना अच्छा अरेंजमेंट नहीं था, मेडिकल अरेंजमेंट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उनको फर्स्ट एड दे रहे थे। तो मैंने बोला क्या हुआ इनको, तो अंदर से डॉक्टर आई और कहती कि इनको पहले बिठाइए, मुझे कि बिठाइए इनको, फिर इनको आराम से बताया कि कैसे हुआ ये सब कुछ। कहते आप कहां पर थे, तो मैंने उनको बताया कि मैं रास्ते में उतरी ऐसे ऐसे। मैडम दोनों ना कोमा में है। अगर आपका कोई रिलेटिव है यहाँ पास के आर्मी हॉस्पिटल में तो हम वहां उनको शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास कोमा पेशेंट्स के लिए कोई भी सुविधाएं नहीं है। तो फिर किसी ने कहा कि नहीं यहां मत कीजिए, इनको स्टेट के बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दीजिए। तो अकॉर्डिंगली एम्बुलेंस में उनको शिफ्ट करें, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैं अपनी सिस्टर को देख रही हूँ, शी वॉज अनकॉन्शियस, और मेरे हस्बैंड थोड़ी सी आवाज कर रहे थे और उनके पांव दिख रहे मुझे सिर्फ। और मैं बाय नेचर बहुत ज्यादा जिद्दी थी एक्चुअली, तो मैंने जिद भी नहीं की मैं अंदर जाकर के देखूं कि क्या हुआ। एज इफ समबडी वॉज मेकिंग मी साक्षी कि एकदम से स्थिर होकर के देखो कि क्या सीन चल रहा है। और मैं कोई रो नहीं रही, कोई चिल्ला नहीं रही हूं। मेरी सिस्टर का बेटा ला करके मेरे पास रख दिया उन्होंने कि आप इसको संभालिए, इसको इतनी ज्यादा नहीं लगी है, क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर एक ही जगह पर रहते थे। एक ही जगह पर जहां मेरी पोस्टिंग थी वहीं पर मेरी सिस्टर की पोस्टिंग, हम इकट्ठे रहते थे वहां पर। तो वो बच्चा मैंने संभाल लिया और मैंने बोला कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं हुई होगी, ठीक है। क्योंकि मेडिटेशन में सिखाया जाता है कि बी पॉजिटिव, जब भी आपके पास ऐसा है तो आपको पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने और पॉजिटिव सीन्स क्रिएट करने। तो उनके साथ एम्बुलेंस में जाने की मैं जिद कर सकती थी कि मैंने इनके साथ जाना है, तो मैंने कोई जिद नहीं की। मैं रादर उनकी फ्रेंड की गाड़ी में, मैं और मेरे साथ एक और सिस्टर बैठी, वो और उनका बेटा मैंने अपनी गोद में लिया हुआ है। वो सिस्टर बहुत घबराई हुई है क्योंकि बड़ा कुछ हुआ हुआ है, लेकिन मुझे ऐसे लगे कि कोई खास कुछ नहीं हुआ, ज्यादा नहीं हुआ है। और मैं विजन बनाने लग पड़ी, क्योंकि ये 10 मार्च 2012 की बात है, 16 अप्रैल को मेरी सिस्टर के घर एक फंक्शन था। मैं उसका विजन बनाने लगी कि हम सारे गए हुए हैं, मेरे हस्बैंड भी हैं वहां पर, मेरी सिस्टर भी है, सभी बच्चे बड़े वेल ड्रेस्ड हैं। तो मैं ये विजन बना रही हूँ उसी रास्ते में चलते चलते, और बच्चे को पूरा पैसे पाएगी। कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा उसको दर्द हो रहा था बहुत, उसको कहानियां सुनाते सुनाते लेके जा रही हूँ। तो वो जो मेरे साथ सिस्टर बैठी थी, वो बेसिकली मेरी सिस्टर की सिस्टर लॉ थी। तो वो मुझे देख रही है और बहुत हैरान हो रही है कि ये स्टेबल कैसे। लेकिन उस समय भी मैं बिंदु के साथ जुड़ी हुई थी, जैसे वो मुझे खींच लेता था ऐसा था। तो चलती गई आगे, जैसे हॉस्पिटल हम लोग पहुंचे तो सिस्टर को ले गए थे आईसीयू, और वो वेंटिलेटर पे थी और हस्बैंड ने शरीर छोड़ दिया था। तो जैसे मैं गई तो सभी लोग खड़े थे वहां पर और सारे मुझे बड़े हैरानगी से देख रहे हैं, लेकिन मेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं। मैंने बोला ये क्या, क्यों देख रहे हैं इस तरह से, क्या हो रहा है। तो फिर मेरे ब्रदर लॉ मेरे पास आते हैं और मुझे बड़े प्यार से बच्चे की तरह मुझे ट्रीट करते, वो मेरे हस्बैंड के बड़े ब्रदर। तो उन्होंने मुझे कहा कि रेनू जय नहीं है। मैंने बोला ये आप क्या बोल रहे हैं। कहते हाँ सचमुच ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आपने बहुत हिम्मत रखनी। और खुद रो रहे हैं और मैं रो नहीं रही हूं, मैं बैठ गई उधर। कुछ अजीब सा सीन लग रहा है और मुझे खुद हैरानगी हो रही है कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ है मेरी लाइफ में, लेकिन मुझे रोना नहीं आ रहा है। और मैं खुद अब हैरान हो रही हूं कि ये क्या हो रहा है। मतलब मुझे कुछ भी नहीं समझ आया, जैसे ना मेरी बुद्धि को किसी ने बांध लिया हो, जैसे किसी की अभी लगता है कि हम वो जैसे विजडम थी, आज हमें पता चलता है कि वो विजडम है ना, लेकिन उन लोगों के सामने वो मुझे अपना बुद्धूपन लग रहा था कि मुझे क्यों नहीं आ रहा है रोना, जबकि इतना बड़ा डिजास्टर हुआ। क्योंकि सभी लोग बहुत अजीब अजीब से हरकतें, सभी आ रहे थे मेरे सिर पर हाथ फेर रहे थे और मुझे गंदा लग रहा था कि ये मुझे क्या कर रहे हैं, मुझे अजीब लग रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, मुझे इनका सांत्वना नहीं चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्यों मुझे कर रहे हैं इस तरह से, मुझे इनकी सांत्वना चाहिए, आई एम ओके ऐसा करके। तो फिर वो सब सिस्टम हुआ, फिर हम लोग घर चले गए, जो भी है, जो भी छोटे मोटे रिचुअल्स जो भी होते हैं। बट मेरे लॉज इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे कभी भी रिचुअल्स में नहीं बैठने दिया। शायद वो मुझे देख रहे थे कि मैं बहुत छोटी हूँ एज में उस समय, और मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे, और ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर था पूरे खानदान में, ऐसा कभी नहीं होता। माई हस्बैंड वो यंगेस्ट इन द फैमिली, पूरी फैमिली में सबसे छोटे थे वो। तो वो दिन भी ऐसे ही बीते। अब लेकिन उस समय भी मैं 4 बजे उठ जाती थी अमृत वेला, वही मुझे आदत थी ना कि सिविल्स के लिए ऐसा करके, तो वो मैं उठ जाती थी और मेरे अपने आप ही मुझे आदत पड़ी थी। और मैंने मेडिटेशन करना, क्योंकि मेडिटेशन में मुझे आनंद आता था, इंजॉयमेंट बहुत ज्यादा आनंद आता था, तो मैंने बहुत उसमें ब्लिस में रहना, उसी ब्लिस में। कई बार मैंने चेहरा देखना कि क्या हुआ है जिंदगी में, कई बार मिरर के सामने खड़े होना और मैं देखना सच में कोई डिजास्टर हुआ है क्या, अगर हुआ है तो फिर मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा है। कई बार मैं अपने आप को ही देख करके कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ, कई बार मुझे अपने ऊपर शक होता था इस बात का, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि मुझे भगवान ने चुना है, ऐसा तो कुछ पता नहीं था। तो वो 1-2 महीना बीतता गया जैसे जैसे धीरे धीरे। फिर क्या था कि मेरा अब 10 अप्रैल 2012 को मेरा रिजल्ट निकला सिविल्स का ही, और मेरा मेन्स क्वालिफाई हो गया। तो अब मेरे को इंटरव्यू भी देने जाना था, लेकिन उमंग उत्साह उतना ही। अभी मेरे हस्बैंड को गए, जून में मेरा इंटरव्यू था, हस्बैंड मार्च में गए, अप्रैल में और जून में, दो महीने के बाद इंटरव्यू था, और मैं उमंग उत्साह उतना ही कि मुझे इंटरव्यू देने जाना है सिविल्स का। मतलब मेरे चेहरे पर या मेरी लाइफ में कोई शिकर नहीं कि एक लड़की के लिए उसके हस्बैंड का जाना पूरी लाइफ बर्बाद होना होता है। और मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, अभी छोटा वाला स्कूल भी नहीं जाता था और बड़ा वाला सेकंड क्लास में पढ़ता था, तो उन बच्चों को भी वो जब मुझे बहुत नॉर्मली देख रहे हैं तो वो भी मस्त हो रहे हैं एकदम से कि कुछ नहीं हुआ है, मम्मा हमारी ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे मस्त हैं। तो इसी को देख करके शायद घर वाले भी सोच रहे हैं कि नहीं सब नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मुझे कहीं पर भी वो बैठने वगैरह नहीं देते थे। और साथ में जब वो उससे पहले एक क्रिमेशन के लिए मेरे हस्बैंड को लेके जा रहे हैं, तो मैं अपनी मदर इन लॉ को संभाल रही हूँ, सारे देख रहे हैं कि लाइफ इसकी बर्बाद हुई है और ये अपने मदर इन लॉ को संभाल रही है। वो मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा था कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंस और इतनी एनर्जी मेरी हाई थी उस समय कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे खुद कोई पता नहीं चलता था कि अच्छा ऐसे ओके ठीक है हो गया, अब मुझे ये देखना है कि मुझे आगे कैसे चलना है। तो मैंने उसे उन्हीं दिनों ना, मेरे हस्बैंड ही CSIR नेट होता है उसका फॉर्म लेकर के आए थे, तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था, तो मैंने NET का एग्जाम देना था, तो वो लेकर के आए थे, तो फॉर्म मेरे पास पड़ा हुआ था, अभी 10 दिन थे पहले 10 दिन, तो पहले 10 दिनों में फॉर्म भर रही हूँ और उसको पोस्ट करने का डेट आ गया, तो मैंने भर दिया। मैंने बोला मैंने तो एग्जाम देना है, पढ़ना है मुझे, क्योंकि पढ़ाई मेरा जुनून था एक्चुअली, तो मुझे पढ़ना है। तो मैंने फॉर्म भरा और उसको मैंने फोल्ड कर दिया एक लिफाफे में, सो गई मैं रात को, सो गई, सुबह अमृत वेले उठी और उसके बाद ना मुझे जैसे ना अमृत वेले से थोड़ा पहले मुझे जैसे मुझे मेरे हस्बैंड ने आकर के कहा, मुझे जैसे स्वप्न आया, उन्होंने मुझे कहा कि तूने एक्नॉलेजमेंट बीच में नहीं डाली है, मतलब ही सेड टू मी कि तूने एक्नॉलेजमेंट बीच में नहीं डाली है। तो मुझे तो यकीन नहीं हुआ इस चीज का कि ये क्या, मैंने सोचा ऐसे स्वप्न है ये, सचमुच मैं उठ करके देखा तो फॉर्म के पीछे एक्नॉलेजमेंट है। फिर मैंने दोबारा से वो एनवेलप खोला और एक्नॉलेजमेंट बीच में डाला, फिर से ये चीज, मतलब दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई, मतलब वो हस्बैंड की सोल ने भी मेरे साथ कन्वर्सेट किया, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो क्या होता है जागृत अवस्था में, तो जब आप है ना उस तरह से, आज मुझे वो थोड़ी सी चीज क्लियर होती है। फिर उसके बाद मैंने सिविल्स का एग्जाम, उसका इंटरव्यू था मेरा, हम लोग, मैं शिफ्ट हो गई अपने इन लॉज से, मैं वहां पर शिफ्ट हो गई, मेरी सिस्टर अभी भी कोमा में ही थी, तो सारे घर के लोग लगे हुए थे कि मेरी सिस्टर को रेयर करने के लिए कि वो ठीक हो जाए किसी न किसी तरीके से, उसके शरीर को सेट रख रहे थे, लेकिन उसका ग्लासगो कोमा स्केल बेसिकली 3 to 13 or 12 होता है शायद, और कहते 8 से ऊपर हो अगर ग्लासगो कोमा स्केल तो रिवाइवल के चांसेस होते हैं, 8 से ऊपर हो तो, लेकिन उसका 3 से ऊपर गया ही नहीं। फिर भी क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं तो हम लोग मर्सी किलिंग में बिलीव नहीं करते हैं, तो हम लोगों ने कहा जितना हिसाब किताब उसको लेना है वो लेगी, तो हॉस्पिटल में ही रही कम से कम भी कोई 1.5 साल हॉस्पिटल में ही रही वो, तो हाँ वो सारे हम लोग घर के सभी इन लॉज में से भी, उसके हमारे मायके में से भी सारे उसको घंटा घंटा दो दो घंटे उसको सर्विस देते रहते थे, ताकि उसकी हाँ तो उसकी जैसे फिंगर्स को ऐसे करना कि इसके अगर ये उठ जाए, इसका ब्रेन अगर रिवाइव हो जाए तो ये उठ जाए तो इसके एटलीस्ट ये जो अंग है ये जुड़ने नहीं चाहिए ताकि ये चल पाए, किसी न किसी तरीके से था। तो किसी का भी ध्यान मेरे पर नहीं था कि मेरी लाइफ नहीं रही, मतलब एवरीबॉडी वाज फोकसिंग ऑन हर कि वो ठीक हो जाए तो फिर हम इसका भी सोचते हैं किसका क्या करना है। तो अकॉर्डिंगली मैं अकेली थी, अब मुझे जहां पर मेरी जॉब थी वहां से, क्योंकि वो एक गांव जैसा एरिया था, अब छोटी जगह पर उन्होंने सोचा कि इसको नहीं रखना, तो उन मेरे पेरेंट्स ने और सबने मिलकर के मुझे सिटी में शिफ्ट करवा दिया, जम्मू में ही जो मेन सिटी है वहां पर शिफ्ट करवा दिया, वहां पर मेरी ट्रांसफर हो गई और मैं किराए के मकान पे रहने लगी। मेरी सिस्टर ने मुझे दिलवाया, उनके घर में दोनों बेटियां ही थी, अंकल आंटी और बेटियां, तो बड़ा एक अच्छा सा घर उन्होंने मुझे लेके दे दिया, वहां पर मैं रहने लगी। और मेरे पास 4 बच्चे होते थे उस समय, 2 मेरी बहन के क्योंकि हम लोग इकट्ठे रहते थे, उसके बच्चे और मेरे बच्चे इकट्ठे खेलते थे वहां से भी, तो अब उनको माँ की कमी फील ना हो तो वो अकॉर्डिंगली मेरे साथ अटैच थे क्योंकि हम इकट्ठे रहते थे वहां पर, तो उस समय 4 बच्चे मेरे पास होते थे और 4 बच्चों को देखना फिर जॉब भी करना ये सब चलता रहा। और जून में मेरा इंटरव्यू आया, हम लोग कश्मीर गए, कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में इंटरव्यू होता है, वहां पर हम लोग गए, वहां पर भी लेकिन उमंग उत्साह उतना ही, क्यों, क्योंकि मैं बिंदु के साथ अभी भी चिपकी रहती थी, जैसे मुझे दुख लगता था बस मैंने उसको, पता नहीं कैसे मुझे विजुलाइजेशन आती थी, मुझे कुछ पता नहीं है इस चीज का। नहीं मैं जाती नहीं थी ब्रह्मा कुमारी, मैं सिर्फ वहाँ स्टार्टिंग गई थी, सुना था। और वो वहाँ पर मुरली क्यों ली थी मैंने, क्योंकि उसमें जो क्लू मिलता था कि मेरा सिविल क्वालिफाई हो जाएगा। मेरे को फील हुआ ये अभी अभी आपको कोड खुलेगा अभी अभी। अवेकनिंग हेल्प मी ओनली द पावर ऑफ द थॉट, राइट। और दीदी बीच में एक वो करवाती थी, छोटी छोटी मेडिटेशन करवाती थी, हाँ। तो वहीं से, हाँ वहीं से वो विजन शायद मैंने देखा था, बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट शायद मैंने देखा था। और जबरदस्ती उस पर फोकस किया था सबसे पहले, जबरदस्ती कि और कुछ नहीं दिख रहा है बाहर, तो यही कन्वर्ज करके देखो अपने इंटेलेक्ट को। ये भी नहीं पता था कि इंटेलेक्ट और माइंड होता है, अभी कुछ क्लियर नहीं था वैसा। और फिर इस तरह से चल रहे, तो मेरा इंटरव्यू था वहां पर कश्मीर में, तो सुबह 4 बजे वैसे ही अमृत, वहां पर भी मैं कहां पर रही, ब्रह्मा कुमारी सेंटर में, क्योंकि जिस दीदी के साथ मैं अपने जहां पर पहले मेरी जॉब थी वहां पर जुड़ी थी, उन्होंने जम्मू में आकर के एक और दीदी के साथ मुझे जोड़ दिया था। लेकिन अभी भी ये नहीं कि मैं ब्रह्मा कुमारी इसके ज्ञान के साथ जुड़ी हूं या पूरे ब्राह्मण लाइफ के प्रिंसिपल वो प्रैक्टिस कर रही हूं, कुछ नहीं। रादर क्या करती थी, बिंदु के साथ जुड़ना, पावर भरनी, फिर किसी को डांट रहा तो डांट भी देना, गुस्सा भी कर देना, कोई बुरा कह रहा तो बुरा भी कह देना उसको। मैंने जो जो प्रिकॉशंस हम लोग लेते हैं ना कि ये सिन है और ये पाप है और ये पुण्य है, ये परिभाषा कुछ नहीं बताती। और क्या होना कि जैसे गुस्सा कर देना, एनर्जी कम होनी, फिर से एनर्जी ले लेनी, मतलब के लिए। यस यस, मतलब के लिए, क्योंकि मैं तो गॉड के पीछे थी नहीं ना कि मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए था, अभी हस्बैंड भी चले गए थे तो कॉन्फिडेंस रेस था, इसीलिए तो सोचा कि अच्छा ये हो गया, मैं फिर से पढ़ूंगी, बस यही वो ग्रेड के पढ़ाया, मैं आईएएस करूंगी, ऐसा अभी ऐसा वैसा ही ग्रेड चल रहा था। तो मेरा 4 बजे उठ करके अमृत वेला किया और उस दिन मेरा इंटरव्यू था। उस दिन फिर से मुझे विजन हुआ, जैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा बेस्ट ऑफ लक, मतलब ही टोल्ड मी कि यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू सो गुड लक, ऐसे। अभी मुझे वो फीलिंग याद आती है, वो दोनों इंस्टांसेस, उसके बाद नहीं हुआ कभी भी। फिर उसके बाद जब वो इंटरव्यू देकर के हम वापस आ गए, रादर उन्होंने जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने मेरी बोल्डनेस को बहुत अप्रिशिएट किया कि ये इतना इसमें से ऐसे ऐसे करके गुजरी है, तो सर से मतलब पूरा पूछते हैं आपको क्या कहां से कैसे। तो देन आई टोल्ड कि आई एम वाइफ ऑफ लेट दिस ओनर, उन्होंने मुझे देखा कि लेट क्या हुआ कैसे, तो देन आई टोल्ड लिटिल बिट, थोड़ा बहुत बताया मैंने उनको। फिर हम लोग वापस आए, जब मैं वापस आई तो फिर से अभी वही ग्रीड किसकी, पढ़ाई की, कि अभी पढ़ना है। और तो मेरा जून में ही लास्ट जून में ही मेरा वो होता है CSIR का एग्जाम, तो मैं उसके लिए पढ़ने लग पड़ी। बच्चों को घर का काम करना और उसको सेटिंग करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मैं बचपन से हॉस्टल में रही, मुझे सेल्फ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आता था। 5th स्टैंडर्ड से मैं MSc तक हॉस्टल में रही हूं, तो काम को टाइम को कैसे मैनेज करना ये मुझे बहुत अच्छे से आता था, मतलब उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो बच्चों को सब कुछ सेट करके, खाना वाना ये सब कुछ करके, मेरे पास एक कुमारी भी थी वैसे, वो आज भी मेरे पास रहते, बचपन से मेरे पास रही है वो, तो वो खाना वाना सबको देख लेती थी। और मैंने फिर पढ़ाई में बैठ जाए, फिर मेरा निकला इंटरव्यू का रिजल्ट, उसमें मेरा इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ। लेकिन इसमें चेंज क्या मैंने देखी कि मैं जैसे पहले एग्जाम में बैठती भी नहीं थी, इससे मुझे एग्जाम में बैठने की हिम्मत मिली। दूसरा, मुझे फेलियर से बहुत डर लगता था, इसलिए मैं एग्जाम में नहीं बैठती थी कि कहीं मैं फेल होगी तो मेरी इंसल्ट होगी। इस पर मुझे फेलियर से कोई भी वो नहीं हो रहा था, मैंने सोचा ना कि अच्छा मेरा कश्मीर यूनिवर्सिटी से इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ तो मुझे उसका फील होता था, जैसे बहुत एक डीप नैरो फीलिंग आती थी मेरी माइंड में। इससे पहले कभी कोई एक दो नंबर भी कम हो जाना किसी से, आई यूज टू बी अमंगस्ट द टॉपर बट वॉज नेवर अ गोल्ड मेडलिस्ट, तो वो जैसे एक तो मार्क्स भी कम हो जाना तो बहुत नैरो फीलिंग आनी, और ईर्षा होने की इससे मार्क्स क्यों ज्यादा है, पक्का मेरे साथ पॉर्चुनिटी हुआ है, कहीं ना कहीं किसी ने इसको नंबर ज्यादा दिए मुझसे, अदरवाइज आई वाज गुड इन स्टडीज, मेरे को ऐसा। फिर उसके मैंने पेपर भी देखने की इसने क्या ऐसा किया है, जबकि मेडिटेशन करने के बाद मुझे पता चला कि मेरे में फ्लॉ था टाइम मैनेजमेंट, मेरा हमेशा पेपर छूटता था। अब इनमें जो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के मैंने एग्जाम दिए थे, इसमें मैंने कम्प्लीट एक ही चीज चेक किया था, एक तो कॉन्फिडेंस, दूसरा मैंने सारे के सारे पेपर कम्प्लीट किया था, उसमें मैंने बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं था, अदरवाइज थ्रू आउट लाइफ मेरे क्वेश्चन छूटते थे, मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं आता था। ये मुझे मेडिटेशन से, जिसको कहते हैं ना आपको अपनी कमियां पता चलना शुरू होते हैं। फिर उसके बाद जर्नी स्टार्ट हुई, मैं किराए पर रहती थी, लेकिन किराए पर रहना इतना आसान नहीं होता है, खासकर क्योंकि मैं अकेली थी सब कुछ मैनेज करना, तो वो धीरे धीरे वो जो मकान मालिक थे उनका थोड़ा थोड़ा वो स्टार्ट हुआ, जिसको कहते हैं सुपर मेसी की अकेली है, तो इस तरह से ऐसे करके। लेकिन चेंज क्या आया गया था मेरे नेचर में कि जैसे मैं पहले बहुत रिएक्टिव होती थी, अब मैं रिएक्टिव नहीं थी। ये टॉलरेंस अपने आप आ गया था मुझ में, ये उसी बिंदु से। ये भी मुझे पता नहीं कि उसी बिंदु से आया, लेकिन आ गया था। और साथ में फिर मुझसे ना कुछ बहुत आध्यात्मिक बातें निकलती थी मुख से, जो कि आज बीकेस की लैंग्वेज में बड़ी नॉर्मल बात है, लेकिन उस समय एक नास्तिक व्यक्ति जो नॉर्मल दुनिया की बातें करता हो, उसके मुख से कुछ बहुत स्पष्ट शब्द हिंदी के निकलना, ये एक बहुत चेंज थी जो अपने आप ही हो रहा था। फिर मैं एक जीवन से बहुत पर्सनल इंस्टेंस आपके साथ शेयर करूंगी, खासकर उन लोगों के लिए शायद जो ज्ञान में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि यहां पर शादी ब्याह को मना किया जाता है, राइट। तो मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्मोइल उस समय चला था, 2012 से लेकर के 2014 तक। सभी कह रहे थे कि शी इज वेरी यंग एंड शी शुड गेट मैरी एंड ऑल दिस, और मेरी सिस्टर भी कोमा में ही थी, तो सभी कहते कि शी शुड मैरी टू द ब्रदर इन लॉ, राइट। अब क्योंकि ब्रदर इन लॉ हमारा फैमिली का सिस्टम, हम ब्राह्मीण फैमिली से, तो हमारा सिस्टम बहुत प्योर और पवित्र होता है। हम लोग हर व्यक्ति को ब्रदर की नेचर से देखते हैं, लेकिन समाज अजीब सा है, तो उनकी तरफ से एक बड़ा अजीब सा प्रपोजल आता था जो कि मैं कभी नहीं स्वीकार कर सकती थी। और मैं अपने ब्रदर इन लॉ को, जीजा जी को, मैं दीदी के साथ मिलाने के लिए गई ताकि वो भी ज्ञान में आ जाएं, क्योंकि मुझ पर फोर्स किया जा रहा था कि मासी का मतलब होता है मां जैसी, तो वो दो बच्चे तेरे साथ अटैच है तो तुझे ये सेक्रीफाइस करना ही होगा। मतलब एवरीबडी वॉज सेइंग ओके नो इश्यूज आई डू, बट जीजू शुड कम इन टू द ज्ञान। तो जीजू का भी भाग्य खुला नहीं था ज्ञान के लिए, क्योंकि इसमें भी एक वो चाहिए। जीजू ने रीमैरिज कर लिया क्योंकि 2014 में मेरी सिस्टर चली गई उसमें। फिर भी मुझ पर प्रेशर रहा, क्या रहा कि यू आर वेरी यंग, तुम अभी फैंटेसी के वर्ल्ड में जी रही हो, तुम्हें ये जो कॉन्फिडेंस है, जैसे तुम्हें समाज के थप्पड़ पड़ेंगे तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस सारा नीचे आ जाएगा। लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि जैसे नहीं, मुझ में पावर है और मैं कर सकती हूँ, और ये पावर मेरी नहीं थी एक्चुअली, वही बिंदु मुझे। मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कैसे बाबा आपको गिरने से बचाता है, बाबा ने मुझे कैसे रीमैरिज से बचाया। फिर लेकिन सबने मुझे डराना, तुम बहुत छोटी हो, अकेले नहीं रहा जाता, कोई नहीं, मेरी सिस्टर्स, मेरे सभी, हालांकि आज मुझे समझ आता है कि वो सारे अपनी तरह से ठीक थे, क्योंकि उनको ज्ञान का आज तक भी पता नहीं है। मेरी फैमिली से अभी भी कोई भी ज्ञान में नहीं चलता है। हाँ, मुझे भी नहीं था, मुझे भी नहीं था रियली, क्या भला नहीं, अब तो बताया है, अब तो वो धीरे धीरे खींच रहे हैं इस समय। उस समय तो मैं ही तो ज्ञान में नहीं थी ना, मैं तो ये सोच रही थी कि ये मेडिटेशन का तरीका है, मुझे थोड़ा पता कि वो बिंदु परमात्मा है। मैंने आपको बोला ना, अभी पता चलेगा ना बाद में, जैसे नीचे गिरूंगी पता चलेगा, छोड़ेगा अभी तो वो मुझे। तो मुझे ऐसा लगता था नहीं, मैं सब कुछ अकेले कर सकती हूँ। मेरे बच्चे मुझ जैसे ना, उनका कॉन्फिडेंस मैंने देखा कि जैसे लो हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने उनको स्कूल में डाला तो एक स्कूल में एडजस्ट नहीं हुआ तो दूसरे स्कूल में डाला, ऐसे कि उनका कहीं मोराल डाउन ना हो जाए, फादर भी नहीं है और अकेले इस तरह से। और साथ में मैंने डिसाइड किया कि मैं, मेरे लॉज कहीं तो मैं मेन सिटी में स्टे करूंगी, मेरे लॉज चाहते थे कि उनके साथ स्टे करें। लेकिन क्योंकि मुझे पढ़ना था, यूनिवर्सिटी थी पास में, तो मुझे लगा कि अगर मैं सिविल्स नहीं करूंगी तो मैं पीएचडी परस्यू करूंगी। आई वॉज ऑलरेडी एमफिल, लेकिन मुझे लगता है मैं पीएचडी करूंगी, मैं ना, और कि मेरी जीवन, मेरे जीने का सहारा था पढ़ाई, क्योंकि मुझे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने कहा अच्छा, मैं कुछ ना कुछ करती रहूंगी, सिर्फ मैंने बच्चे ही थोड़े ना पालने हैं या जॉब ही थोड़ी। सभी कहते थे अब तुम ना अपने बच्चे पालो, बस उस पर ध्यान दो। तो मैंने बोला नहीं, जीवन जीने के लिए मुझे सहारा चाहिए, तो मेरा जिसमें इंटरेस्ट है मैं उसको परस्यू करूं। तो पास में यूनिवर्सिटी थी तो मैंने वहीं पर रहना डिसाइड किया। तो उसके लिए इन लॉज मेरे बहुत अच्छे, लेकिन थोड़ा एनॉय हुए कि ये अकेले डिसीजन ले सकते हो, जिद्दी है बहुत ज्यादा, तो ऐसे तो उन सब ने मुझे अकेले छोड़ दिया। मेरे मायके वालों ने भी अकेले छोड़ दिया क्योंकि मैंने उनका प्रपोजल नहीं माना, और मेरे लॉज ने मुझे अकेले छोड़ दिया क्योंकि मैंने उनका भी प्रपोजल नहीं माना। अब मैं अकेली रह गई जम्मू सिटी में, अकेली किराए पर दो बच्चों के साथ, क्योंकि जीजू अपने बच्चे ले गए जब मेरी सिस्टर नहीं रही तो वो ले गए, और फिर मैं सिस्टर ने शरीर छोड़ दिया 2014 में। हाँ जी, उसने शरीर छोड़ दिया, नहीं, वन एंड हाफ आफ्टर टू ईयर्स, शिला 12 में हुआ था तो जनवरी 2014 में उसने शरीर छोड़ दिया। अब उसके बीच में बहुत सारा, 2014 तक अप्रैल, जून 2014 में मैं ब्रह्मा कुमारी आई पहली बार, उसके बीच में मेरे को बहुत डरावा रहा इस चीज का, अकेली है, ऐसा है, वो है, ये है, इस तरह से। तो उन्होंने बोला कि अगर तुझे ऐसा नहीं तो यू चूज योर सेल्फ, ऐसा करो तुम, ऐसा करके। तो मैं क्योंकि फिर से परस्यू करी थी सिविल्स के लिए, आत्मा हिसाब किताब लेने आती है, ये मुझे वहां से डिसिफर हुआ, क्योंकि बचपन से ही ना मेरे माइंड में एक धुंधली सी इमेज होती थी, कोई जैसे गर्ल्स का होता है ना ऐसे धुंधली सी इमेज होती थी, लेकिन वो इमेज कैसे एकदम से क्लिक होगी ये मुझे तब पता चला जब एक सिविल सर्वेंट के साथ मेरी मुलाकात हुई, और वो सर ऑलरेडी सिविल क्वालिफाई कर चुके थे स्टेट का, वो मतलब आईएएस परसू कर रहे थे, तो उन्होंने शायद मेरी बोल्डनेस देखी होगी या इस तरह से ऐसे करके, तो वो मेरे बच्चों के साथ भी मिलने लगे, मेरे बच्चे भी घुलने मिलने लगे उनके साथ ऐसे इस तरह से करके, लेकिन मुझे कहीं ना जैसे मैं क्योंकि बिंदु के साथ जुड़ी रहती थी ना, मुझे कहीं ना कहीं शक होता था कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, माना जैसे उन्होंने कहा वो मेरी फैमिली के साथ भी मिले और उन्होंने कहा कि रेनू इज अ वेरी गुड गर्ल और ऐसे ऐसे आई एम रेडी एंड ऑल दिस, तो माई सिस्टर्स पर यही हैप्पी कि चलो इसको इस तरह से हो रहा है, लेकिन मेरे को अंदर अंदर ना फ्लॉ दिख रहा था कि ये बहुत क्लियर हो रहा है लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है अंदर। फिर मैंने सोचा कि शायद क्योंकि मुझे जिस तरह की इमेज मेरे माइंड में थी बचपन से वो कहीं ना कहीं क्लिक होती थी उस आत्मा के साथ कि जैसे ये है। फिर मैंने अपनी ब्रह्मा कुमारी दीदी के पास जहां पर मैं थोड़ा थोड़ा जाया करती, मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे कुछ है, कुछ इस तरह से ऐसे मुझे लग रहा है कि इस आत्मा के साथ मेरा हिसाब किताब है पहले का। दीदी ने मुझे बताया कि हिसाब किताब होता है पुराना, अगर आपको कुछ लग रहा है वहां पर तो कोई हिसाब किताब है। तो मुझे लगा कि दीदी क्या ये सच में जो ट्रुथ हो ये क्लियर हो सकता है कि ये साफ है कि नहीं। उन्होंने बोला कि अगर ये ऐसा हो रहा तो होने दो, कुछ भी है जो भी ड्रामा में है होने दो, लेकिन क्या ड्रामा है कैसा मुझे कुछ भी क्लियर नहीं था। एटलीस्ट एक दिन क्या हुआ कि मुझे पता चला कि वो आत्मा ऑलरेडी कहीं पर मैरिज कर रही है, माना मेरे पेरेंट्स के साथ मिलने के बाद भी वो कहीं पर और मैरिज करी, क्योंकि उसमें इतनी बोल्डनेस नहीं थी कि वो ये कह सके कि एक विडो को मैं हाथ पकड़ सकता हूँ, राइट। वो सिर्फ इन्फेचुएटेड था इस तरीके से कि नहीं शी इज वेरी बोल्ड और शी इज सेल्फ स्टेबल, एंड उसको कहीं ना कहीं मुझसे पॉजिटिव एनर्जी जाती थी क्योंकि मैं भाव के साथ चिपकी रहती थी। तो आपका ऑरा जब पॉजिटिव हो जाएगा तो कोई भी कमजोर आत्मा ना आपके सानिध्य में खुद आएगी, वो कहीं ना कहीं आपसे शेल्टर ढूंढेगी, ये आज मुझे बात क्लियर होती है। और साथ में जब हम लोग मेरे को इससे पहले यहीं पर ही एक बात और क्लियर हुई कि जब हम लोग की तरफ वापस जा रहे 2012 की बात है, मैं बिंदु के साथ चिपकी रहती थी, बहुत टफ रास्ता जहां पर एक्सीडेंट होने के चांसेस थे वहां पर एक्सीडेंट नहीं हुआ था, लेकिन कहां पर एक्सीडेंट हुआ जहां पर एक्सीडेंट होने का चांस ही नहीं था, क्योंकि उस समय मेरे हस्बैंड बहुत एंग्जाइटी में रहते थे और मेरी सिस्टर भी डिप्रेशन में थी, तो वो दोनों की नेगेटिव एनर्जी और वो जगह जहां पर अक्सर एक्सीडेंट्स होते थे वो मिल गई। उससे पहले मैं गाड़ी में बैठी हुई थी बिंदु के साथ चिपक करके, तो नहीं हुआ, लेकिन अभी तक मुझे ये पता नहीं था कि बिंदु की वजह से नहीं हो रहा है, और ना ही उनको पता था, ना ही उनको यकीन था कि मुझे परमात्मा ने पकड़ा है इसलिए ये बड़े बड़े डिजास्टर जो है वो नहीं हो रहे। तो जैसे इस आत्मा के साथ थोड़ा थोड़ा जैसे बनने लगा, फैमिली से भी क्लियर होने लगा, सारा कुछ क्लियर होने लगा, तो मुझे अंदर जैसे कुछ ना कुछ शक, जैसे बाबा मुझे बचा रहा होगी, नहीं ऐसा नहीं करना है इस तरह से, लेकिन क्योंकि उस समय माया होती है वो ज्यादा, मुझे ये भी नहीं पता कि बाबा मेरे को बचा रहा है या कुछ इस तरह, या बाबा से ही मैं जुड़ी हुई हूँ मेडिटेशन, तो मैं उस आत्मा को वहां लेकर के गई ब्रह्मा कुमारी सेंटर। मैंने सोचा ये भी कोर्स वगैरह करे सारा कुछ, तो दो दिन उसको कोर्स के दो लेसन करवाए, तीसरे दिन वो आत्मा उधर नहीं गई। जब उसने खुद जाना, मैंने बोला अब आप खुद जाइए, क्योंकि वहां पर भाई लोग अकेले जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग इकट्ठे नहीं जा सकते, वहां बहनें अलग जाती हैं, भाई अलग जाते हैं, रूल्स होते हैं उनके, तो आप भी जाइए, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं बनता है उसमें। तो मुझे कहीं ना कहीं क्लिक हुआ कि इसमें कुछ ना कुछ है, और सच मुझे उसके ही एक फ्रेंड ने आकर के मुझे बता दिया कि ऐसे ऐसे उसमें इतनी बोल्डनेस नहीं है कि वो इतना बड़ा डिसीजन ले सके, वो अपने फादर से बहुत डरता है, राइट। तो फिर जब मुझे ये बात पता चली तो मैं उस आत्मा के मुंह पे बोली, जैसे मैंने उस आत्मा के मुंह पे बोली तो वो ब्लश हो गया बेचारा, बहुत ज्यादा डर गया इस तरह से। तो मैंने बोला भैया आप अपना रास्ता ना पिए, मैं अपने रास्ते पर हूं, लेकिन उस चीज का मुझे मतलब सेटबैक बहुत लगा, मुझे फील बहुत हुआ उस चीज का कि उस दिन मुझे लगा कि सचमुच मैं क्या हूं, अकेली हूं, जो मुझे बोल रहा है समाज, सचमुच अकेले हूं, ऐसी कोई मुझे वल्नरेबल समझ करके कहीं ना कोई ऐसा मना अजीब सा, जैसे दीदियां मुझे डराती थी इस तरह से, तो शायद कोई अजीब सा हादसा तो नहीं मेरे लाइफ में होना। तो मैंने इस तरह से फिर धीरे धीरे बिंदु के साथ कनेक्शन और इंक्रीज कर दिया ताकि मेरा वो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए। तो जैसे जो जो मुझे ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई थी वहां से मैंने उसकी आपूर्ति करना शुरू की। फिर से मैं अकेली रहती थी किराए पर। उन दिनों एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चला जम्मू में कि कुछ ना लोग बच्चे किडनैप कर रहे हैं। अब क्योंकि मेरे इन-लॉज भी मेरे साथ नहीं थे, क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी थी, पेरेंट्स भी नहीं थे, उनकी बात भी नहीं मानी थी, अब मैं अकेले रह रही थी, तो मुझे था कि मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी उस समय कि कोई मेरे बच्चों को जहां से वो उतरते हैं घर तक कोई छोड़ दे, तो कोई ऑटो वाला मुझे चाहिए था। तो एक बार मैं यही संकल्प चलाते चलते बिंदु के साथ चिप करके यही संकल्प चलाते चलाते चल रही, तो एक भाई का ऑटो मुझे मिलता है, मैं उसमें बैठ करके घर वापस आ रही हूँ। तो उस भाई की लैंग्वेज मुझे ऐसे लगती है जैसे मेरे गांव से, नेटिव प्लेस से मिलती हो। तो मैंने उनको बोला कि भैया आप कहाँ के हैं, तो उन्होंने बोला दीदी मैं उधर का हूँ, ऐसे ऐसे करके। तो वो व्यक्ति वहीं पर जैसे बाबा ने अरेंज किया हो, आज मुझे पता चलता है कि बाबा ने जैसे अरेंज किया वो व्यक्ति मेरे लिए, कि वो व्यक्ति कब तक रहा, जब तक कि मैंने गाड़ी नहीं खरीद ली, वो तब तक वो भाई रहा, मेरे बच्चों को जहां उनकी गाड़ियां छूटती थी वहां से उठा करके घर छोड़ता था, घर से वहां ले जाता था। वो बीच का जो डर था उसको क्लियर करने के लिए बाबा ने वहां पर भी मदद किया इस तरह से। तो फिर उसके बाद ये सब जब मेरा, उसके बाद क्या हुआ कि जहां पर मैं किराए पर रहती थी वहीं पर आंटी का थोड़ा सा वो चलना शुरू हो गया, माना सुपर में से चलना शुरू हो गया। एक दिन उन्होंने मुझे बहुत अजीब सी बात मतलब बता दी, बच्चों को छत पे नहीं जाने देते थे कि आपके बच्चे ना मिट्टी को हटते हैं छत से तो पानी अंदर आता है, हालांकि कुछ इस तरह का बड़ी छोटी सी बात थी। तो वो जब ये सब स्नेर, तो वो थोड़ा सा मुझे ना बात चुप गई, तो बार बार हो रहा था क्योंकि डेढ़ दो साल से बार बार हो रहा था, तो मेरा मन बहुत उब गया। तो मैंने दीदी को कहा, अपनी सिस्टर को कहा, मैंने बोला कि मुझे ना घर चेंज करना है। उन्होंने बोला देखो जब आपके जैसी आपकी सिचुएशन है ना लाइफ की, जब ये हो तो फिर तन के नहीं रहा जाता है, बहुत झुक के चलना पड़ता है, समाज बहुत कुछ कहता है ये सहन करना पड़ता है, तुम्हारा इतना सामान शिफ्ट नहीं हो सकता है। ये बात भी मुझे बहुत ज्यादा वो लगी, फिर बिंदु से कनेक्शन बहुत जोर से पकड़ लिया उसको। फिर मैंने बोला कुछ भी हो जाए मुझे अपना घर खरीदना, तो पास में फ्लैट बन रहे थे, मेरे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी, सिर्फ 10 लाख था। तो मैंने ये नहीं पूछा कि उसको कितना ज्यादा उसका प्राइस है क्या, 40 लाख का था, 40 लाख का फ्लैट था, हाँ उस हिसाब से नहीं था मेरे पास। तो मेरे पास सिर्फ 10 लाख था बैंक में, तो मैंने क्या किया कि चेक लिया, ये भी नहीं देखा कि और कुछ बचेगा नहीं पीछे, तो मैंने वो चेक लिया, मैंने बोला भैया बुक कर दो फ्लैट। ये कॉन्फिडेंस जो कह रही हूँ वो बाबा किस तरह से कॉन्फिडेंस बना रहा था, ये 2000 अप्रैल 2014 की बात है। उस समय माना 2012 से लेकर के 2014 तक हर समय में उड़ती थी माना सिर्फ बिंदु के साथ चिपकी हूँ, कोई एक इंस्टांस पे ऐसा नहीं होता जब नीचे, और नीचे कब जाती थी, जब मैं गलती कर देती थी, जैसे कहीं ना कहीं उस भाई के साथ जैसे कनेक्शन होने लगा तो वो कहीं ना कहीं ऊपर से कनेक्शन टूटने लगा थोड़ा थोड़ा, है ना, जैसे मुझे लगने लगा कि कहीं ना कहीं मेरी पावर कम हो रही है। लेकिन फिर मैंने उससे क्लिंग होना, जब मेरी पावर कम होती थी तभी मुझे पता चलता था कुछ गलत बात है यहाँ पर, जैसे वो बाबा ना कह रहा हो मुझे पहचान नहीं रही है तू, लेकिन जैसे वो पीछे खींचता हो अपना हाथ कि ये प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। फिर आगे चलते गए, वहां पर 10 लाख मैंने उनको दे दिया, 18 लाख मैंने लोन लिया, और फिर मेरी कुछ थोड़ी बहुत ज्वेलरी थी वो मैंने बेच बोच के, तो 40 लाख का फ्लैट, और मुझे कोई डर नहीं कि मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया, हालांकि वो फ्लैट शायद 36 या 32 लाख का था, मुझे 40 लाख का मिला, लेकिन मुझे कोई भी नहीं कि कोई 4-5 लाख मुझे महंगा मिला। बच्चों के अकॉर्डिंगली घर को मैंने बहुत ज्यादा इंटीरियरली डिजाइन किया। इससे पहले मेरे बच्चे जब वो स्कूल में, मैं उनको पेरेंट टीचर मीट के लिए जाती थी, तो ऑटो में जाते थे मना, ऑटो में, तो बच्चे बोलते मामा हम ऑटो में ही घूमेंगे अब, तो उनके कॉन्फिडेंस को रेज करने के लिए मैंने पहले स्कूटी सीखने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे आई नहीं, जैसे बाबा बोल रहा तू मेरा राजा बट्टा और स्कूटी चलाएगा ना, ऐसे आज मुझे उसके प्यार की, आज मुझे उसके प्यार की एक एक बात याद आती है, इतना स्वीट है ना। तो लेकिन उस समय तो पता नहीं था कि बाबा मेरे को वो दे रहा है, तो वो स्कूटी मैंने खरीदी लेकिन मुझे चलाना नहीं आई, है ना, वो ऐसी डंप पड़ी रही। तो अकॉर्डिंगली फिर मैं ना गाड़ी सीखने के लिए गई, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट मैंने 21 दिन में गाड़ी सीख ली, पता नहीं मुझे कैसे आ गई, मुझे आती नहीं थी, नहीं तो मैंने पहले स्टेयरिंग भी नहीं पकड़ा था कभी, तो मैंने वो ले ली और फिर अपनी गाड़ी पे ही चलाया, मैंने नई गाड़ी खरीदी फिर अपनी। और मेरे मैं जब गाड़ी खरीदने जा रही हूँ तो मेरी सिस्टर अभी भी कोमा में थी उस समय, उसने भी शरीर नहीं छोड़ा था, तो सभी घर वालों को और उनको ये हो कि ये अभी भी ना हवाइयों में उड़ रही है, इसको पता नहीं है क्या हुआ है, हस्बैंड रहा नहीं है, सिस्टर कोमा में और ये गाड़ी खरीद रही है, कोई नहीं गया मेरे साथ गाड़ी खरीदने के लिए, कौन जा रहा है गाड़ी देखने के लिए, मैं और दोनों साइड में बैठे मेरे बच्चे, किसमें, ऑटो में हम लोग जा रहे, हाँ दोनों बच्चे बैठे छोटे छोटे, वो उमंग उत्साह में, मैं भी उमंग उत्साह में, चलो गाड़ी लेने चलते, तो गाड़ी बुक कराए और एकदम से पूरा कैश दे करके पूरी गाड़ी ले ली। अब घर जब लेके जाने, अब मेरी सिस्टर लॉ को पता चला किसने गाड़ी ले ली है, तो बोला रुक जा हम लेने आते हैं, तू मत लेके आना, तो फिर वो गाड़ी लेकर के आई, फिर उन्हें 3 दिन अपने घर रखी, उन्हें पूजा पाठ वगैरह उसका कराया और फिर उसके बाद मुझे गाड़ी मेरे पास छोड़ी और उसी गाड़ी में मैंने अपना फ्लैट खरीदा और फ्लैट की इंटीरियर डिजाइनिंग कराई। और इंटीरियर डिजाइनिंग किसने डिजाइन की? खुद। इंटरनेट पे बैठना, सारा देखना क्या क्या अंदर क्या क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू माय किड्स वो क्या क्या चाहते हैं, वो सारा डिजाइनिंग करनी उसकी। इतना अच्छा वो फ्लैट डिजाइन कर लिया कि सोसाइटी वालों ने मेरा फ्लैट एज ए मॉडल फ्लैट दिखाना शुरू कर दिया। ये कौन इतनी पावर दे रहा था? बाबा सब वही उड़ा रहा था और मैं बिल्कुल वही चिपकी हुई हूँ उसके साथ, बिंदु के साथ ही चिपकी हूँ। चलते जा रहे आगे धीरे धीरे धीरे। अब क्या हुआ, जब मेरा घर पूरा बन गया, गाड़ी आ गई, अब बच्चे भी सेटल हो गए स्कूल में, एकदम से पूरा जैसे रॉयल एक लिविंग स्टैंडर्ड परमात्मा ने दे दिया उकाल से, आर्श से फर्श पर उठा करके चुन चुन के, है ना, कैसे गंदगी से भी बचाया, किस तरह से क्या क्या, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे और बहुत से इंस्टांसेस है जो मैं ओवरलुक किए अभी बताए नहीं आपको, जब मैं लिखूंगी तो एक एक क्षण उसका उसमें फिरूंगी। तो इस तरह से जब पहुंच गए घर में, सारा अपना घर में, अब फिर से क्या मेरे को, क्या मेरा जीने का मकसद क्या, आईएएस की तैयारी, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो नहीं छूटा था, अभी गिरने के लिए कुछ तो चाहिए था पढ़ाई, अब मैं आईएएस की तैयारी कर दू। मैंने सारी सिविल्स की बुक्स पूरी सेट कर दी क्योंकि मेरा ऑलरेडी तैयार था ऑलमोस्ट सिलेबस, तो मैंने वो सारी सेट कर दी मैंने, लेकिन मुझे नींद आना बंद होगी रात को, नींद आना बंद होगी, क्योंकि इन 2 सालों में मैंने इतना काम किया था कि मेरा मेडिटेशन का टाइम कम हो गया था। माना सुबह कई बार अमृत वेला करना, फिर ऑफिस जाना, फिर बच्चों को देखना, ऐसे करना, इस तरह से बीच में चिपकना तो सही उसको, लेकिन एनर्जी वेस्ट भी बहुत ज्यादा हो रही थी। और साथ में प्रिकॉशंस लेते हैं, जैसे ब्राह्मण अब दिखाते हैं कि भैया अगर आपने एनर्जी खींची है तो उसको वेस्ट नहीं करो एंगर में, तो वो तो मैं करती थी, तो गुस्सा भी करती थी, बच्चों पर हाथ भी उठाती थी, शॉट भी करती थी, ऐसे नहीं ऐसे बैठना, इस तरह से किसी ने बुरा कहा हो तो भी मैं उसको वो रिपेंट करती थी कि क्यों कहा आपने ऐसे, आप कौन से मेरी मदद कर रहे हो, ऐसा मना सारा कुछ, जो गलतियां अब हम ब्राह्मीण लाइफ में नहीं कर सकते हैं उस समय बिंदास करती थी वो गलतियां, जैसे बाबा उस समय कह रहे बच्चे कोई बात नहीं ऐसा ना, फिर भी वो मुझे अपने साथ जोड़ लेता था। तो 2014 में अपने घर में पूरा सारा गृह प्रवेश वगैरह सारा हो गया। और जो लोग देखिये लाइफ की, वो जिन लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था ना, इन लॉज में भी और उनने भी, उन्होंने अपनी वजह से, मतलब वो गलत नहीं थे क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी थी, जिद्दी थी ना उनको, वो अपने तरीके से मेरी प्रोटेक्शन चाहते थे, मेरे पेरेंट्स भी और वो भी सारी प्रोटेक्शन चाहते, लेकिन वो मुझे अंदर से रंजिश थी कि उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया ना, मैं करके दिखाऊंगी ऐसा, ये नहीं पता कि वो करवा रहा है ना, मैं सोच रही मैं अपनी पावर से चल रही हूं। तो मैंने अपने घर में, तो वो लोग आ गए सारे इकट्ठे होकर के आ गए, लेकिन अंदर से मैं बहुत टिट फॉर टैट करती थी, मैंने अगर किसी ने नहीं किया है ना तो मैं उसको दिखाऊंगी, ऐसा ऐसा रहता था मुझे बहुत ज्यादा। तो वो बाबा ने जैसे मुझे कहा कि आने दो इनको, जैसे बाबा के साथ चिपकना ना, उसने कहा आने दो, जैसे मुझे कोई गलत बात कहना ना, तो बाबा ने उस समय मुझे क्या सिखाया, क्या सिखाता था वो, कि बिंदु रूप में उन सब आत्माओं को अपने आप ही आता था मुझे ये। देखो मैंने कोई मेडिटेशन कोर्स तो किया नहीं था, ना ही 7 डेज कोर्स किया था, अभी ज्ञान में नहीं आई थी हा? तो बाबा मुझे कहते थे जैसे उसी बीज रूप में ना उन सब आत्माओं को इमर्ज कर, उनको इमर्ज कर ना, फिर मैं उनको इमर्ज करती थी, जैसे मेरी लॉस की आत्मा है, दूसरी है, तीसरी, उनको इमर्ज कर और क्या बोल, बाबा सिखाता था क्या बोल, गॉड ब्लेस बोल, ऐसे बोल इनका भला हो। तो मैंने बार बार जैसे मुझे किसी की बात बुरी लगनी ना, तो मैंने उनको कहना अच्छा इनका भला, हे परमात्मा इसका भला हो, ऐसे करके गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, परमात्मा ने ऐसे कहना सिखाया। तो जैसे गृह प्रवेश हुआ, लेकिन अंदर से अभी गुमान वही कि मैंने किया है, ये जितना कुछ भी किया है 2 साल में ये मैंने किया है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कि वो बिंदु है, मैं वो मेडिटेशन है, सिंपल मुझे आता लगा ना तो मैं खींच लेती हूँ एनर्जी, दैट्स इट, बाकी को नहीं आता तो नहीं। तो वो 2014 तक ये सब कुछ हुआ, तो मुझे अब नींद आना बंद हो गई। वहां पास में एक साइकेट्रिस्ट है, मन्नो अरोरा नाम है उनका, जम्मू के बहुत फेमस साइकेट्रिस्ट है, तो मैं उनके पास गई, उन्होंने बोला मैडम आपको ना ये एक मेडिसिन दी पैक्सीडेप करके होती है, तो वो दी उन्होंने बोला आप ये खाइए। तो मुझे उस समय था कि मैं क्या नींद के लिए अब दवाई खाऊंगी, मतलब मुझे दवाई खानी है। तो मैंने पहली बार दीदी को बोला कि दीदी मुझे ना माउंट आबू जाना है, इससे पहले भी मैं 3 बार माउंट आबू आने का ट्राई कर चुकी थी, लेकिन बाबा ने मुझे नहीं आने दिया था, नहीं आने दिया। वो भी इंस्टांस इतने ड्रामेटिक हैं कि एक बार मेरा पूरा निश्चय हो गया है कि मेरे को जाना है, और मेरे हस्बैंड की उस दिन साल कंप्लीट होता ना उसकी एक पूजा थी और मैं अपना पूरा सामान पैक करके वहां पर देके गई क्योंकि वहीं से मुझे ट्रेन पे बैठना है। अभी पूजा वो खत्म हो रही है तो मेरा बड़ा बेटा बैठा हुआ उधर, जैसे धुआं ऊपर उठा है तो ऊपर ना मधुमक्खियों का छत्ता था। पहले कभी उसको कुछ नहीं हुआ, पूजा के पूरे दौरान कुछ नहीं हुआ, लास्ट में जब पूजा खत्म होगी उन मधुमक्खियों का मक्खियां उड़ना शुरू होगी वहां से। जैसे मधुमक्खियां वहां से उड़ी किसी को नहीं लगी ज्यादा, मेरे बेटे को लगी और बेटे को कुछ नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसको सारा कुछ वो दे दिया लेकिन उन्होंने कहा नहीं इसको स्टेट के हॉस्पिटल में ले आओ। तो मैं फिर से जम्मू आ गई, सिर्फ रात को उन्होंने अंदर ऑब्जर्वेशन रखा उसको सिर्फ मॉर्निंग में ताकि मेरी ट्रेन मिस हो जाए। तो बाबा ने मुझे तब तक नहीं आने दिया अबू जब तक कि वो मुझे पूरा निश्चय नहीं करा लेते कि तुम्हें मैंने किस चीज के लिए चुना है। तो वो मैं 2014 तक अप्रैल 2014 तक ये सब चलता रहा जीवन में। फिर उसके बाद जून में जब मुझे नींद आना बंद होगी तो मैं गई वहां साइकेट्रिस्ट के पास, उन्हें बोला आपको डिप्रेशन है ऐसे। तो पहली बार दीदी के साथ कुमारियों की भट्टी में आई क्योंकि उस समय मुझे नींद नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। कुमारियों की भट्टी में आई और मैंने फिर से 5 दिन यहां पर बैठ करके फिर से वही योगा किया क्योंकि जब आपका डिप्रेशन आपको होता तो आपका योग नहीं लगता है। तो मेरा योग नहीं लग रहा था सचमुच क्योंकि वो शायद बहुत ज्यादा मिस्टेक्स बीच में कर ली थी, गुस्सा ये वो घमंड कि मैंने किया ये वो सब कुछ था। अब शायद बाबा थोड़ा ज्यादा एनॉयड था या कुछ इस तरह से था। तो 5 दिन कुमारियों की भट्टी में आकर के फिर से वही कंबाइंड बीज स्थिति का योग किया और ये मतलब वही आनंद आना शुरू हो गया फिर से। लेकिन अभी भी संशय कि परमात्मा ने ही मुझे चुना या 2 साल जो कुछ भी हो रहा था वो ईश्वर की ही मर्जी से हो रहा था या वही करवा रहा था। तो लास्ट में जिस दिन समापन समारोह है दादी रतन मोहिनी बैठे हैं स्टेज पर और मैं नीचे हूँ। हालांकि उससे पहले मैं अनुभव के लिए भी चली गई पर मुझे कोई नहीं पता कि कुमारियों की भट्टी में मैं नहीं जा सकती हूँ। तो मैं ऐसे ही चली गई, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो पता ही नहीं थे कुछ भी क्या है। तो मैं ऐसे ही चली गई, रुपना अपना अनुभव सुना दिया सबके सामने। उल्टा उधर से नीचे उतर करके आई तो बहुत सारी कुमारियां बोलती आप कैसे इस भट्टी में आ गए। मैंने बोला क्यों नहीं, आप तो इस भट्टी में नहीं आ सकते थे, आप तो माता हो तो आप तो इस भट्टी में नहीं आ सकते। जिसने मुझे माता बोला तो मुझे बुरा लगा, माता क्यों बोल रही है मुझे क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि क्या तो मुझे लग रहा है कि और मुझे गुस्सा चढ़ रहा है कि भगवान तो सबका है, किसी में भी आ जाओ इसमें क्या है, ये कौन सा रूल हुआ कि भगवान तो सब। ये नहीं पता कि ब्राह्मण परिवार के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, आज पता चलता है कि ऐसा नहीं इस तरह से ऐसे करना है। उस समय नहीं कि क्या है ये, भगवान तो सबका जो मर्जी आ जाए कैसे, ये क्या हुआ कि हम कुमारियां तो कुमारियों की बड्डी। तो उसमें राधा मैंने जब एक्सपीरियंस सुनाया तो कुछ बहुत सारे लोग मेरे पास आए कि आपको तो बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए। मैंने बोला हाँ ये मुझे, मैंने यही सुनाया कि मेरे को बाबा ने संभाला क्योंकि वो सब हुआ था। अभी भी लेकिन अंदर से क्या है संशय कि सचमुच परमात्मा ने ही चुना मुझे। तो वो टीवी पे आ रहा है वहां पर आगे चैनल पे चल रहा है। तो मैं ना ऐसे और ना उमंग उत्साह में बहुत ज्यादा जैसे उछलती थी 2 साल में, बहुत उछली, पता भी नहीं कि लाइफ में कितने बड़े बड़े पेपर सारे पास क्यों कर लिए थे मैंने पेपर्स, और ये नहीं पता कि मैंने नहीं उस वो करवा रहा था मुझे पास। तो मैंने क्या बोला, मैंने बाबा बोले बाबा सचमुच आपने मुझे चुना है ना, तो मैं ना स्क्रीन पे दिखनी चाहिए अभी। तो मोमेंट मैंने ये संकल्प किया था मैं स्क्रीन पर, हैंड्स प्रूव्ड है, मुझे लगा हाँ सचमुच मुझे परमात्मा ने चुना है। मैं कितना पेपर लूंगी उसका, मुझे शर्म आने लगी अपने ऊपर फिर कि मैं उसका पेपर ले रही हूँ, कैसा पागल बच्चा है ये, मैं उसका पेपर ले रही हूँ। अच्छा मैं वापस गई, यहाँ का भरा हुआ योग बल नहीं चला ज्यादा देर तक, मैं वहां पर गई और वहां पर जाकर के मेरा योग बल फिर से कम हो गया क्योंकि मुझे डिप्रेशन हो चुका था। फिर मैंने डॉक्टर के पास गई, फिर बाबा ने किसी वरिष्ठ भाई के साथ भी मिलाया मुझे, वो वहां पर ही योग भट्टी कराने आए थे जम्मू में ही। तो उनसे मैंने गाइडेंस ली, उन्होंने बोला सिस्टर अगर आपको डिप्रेशन है तो आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बोला हाँ ये मेडिसिन दीजिए आप। तो मैंने ली लेकिन मुझे ज्यादा निश्चय किस पर कि मैं बिंदु रूप से ठीक हो जाऊंगी। तो मैंने उसी का जिद पूरा उसको पकड़ने का कि बिंदु को मेरा योग नहीं लगना, मैंने तब भी जबरदस्ती योग लगाया, जिसको बाबा कहते हठ योग लगाते कई बच्चे हठ योग करते, तो हठ योग से मैंने उसको चिपके रहना, जॉब करते काम करते किचन में चलते फिरते उठते बैठते जैसे वही हो, इससे मेरी अंतर्मुखता की बहुत प्रैक्टिस हुई। वरना मैं बहुत बाह्यमुखता में रहती थी, बातें करना दूसरों को देखना उसका देखना, ये बाबा ने इस चीज में डिप्रेशन के समय मुझे बहुत प्रैक्टिस करवाई अंतर्मुखता, क्योंकि मैं मुझे बहुत पेन रहता था ऐसे ब्रेन में मतलब सिर में ना, और मेरे को नींद नहीं आती थी, तो मैंने जैसे ही उसको देखने की कोशिश करी तो धीरे 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 नींद आना शुरू हो गई और 5-6 महीने में ही डिप्रेशन गायब खत्म हो गया। तो मैं जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका ये कैसे ठीक हुआ, आप मेरे पेशेंट्स को भी कंसल्ट कीजिए। तो फिर मैंने पेशेंट्स को भी बताना शुरू किया, उनके ही पेशेंट्स को, कि ऐसे ऐसे है, बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आए। फिर 2014 के बाद बाबा ने बड़ी अच्छी अच्छी सेवाएं वहां पर करवाई। जैसे अब क्योंकि मैं उसके साथ चिपकी रहती थी तो वो अब एनर्जी का फ्लो ज्यादा आना शुरू हो गया ना, अब कहां पर जिद चलना शुरू होगी, अभी भी नहीं पता है कि ब्राह्मण जीवन के नियम होते हैं कुछ। अभी मुझे जहां पर सेवा के लिए जिसने बुलाना वहां पर चल जाना, जिधर भी कोई बहन बुला रही वहां चल जाना, कोई बहन बुला रही वहां चल जाना, किसी एक सेंटर के साथ नहीं जुड़ना है कि भाई क्या हमें तो परमात्मा ने चुना है, तो जैसे उनको नहीं चुना हो मुझे चुना है। तो अभी भी पूरे नियम उस तरह के ब्राह्मण जीवन के नहीं पता थे, बट हाँ अमृत वेला में बिल्कुल वैसे ही करती थी। बाकी जो बाकी धारणाएं थी ये पहले से ही थी मेरे जीवन में, जैसे प्याज लहसुन नहीं खाना तो हम मुंह में ऑलरेडी ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो वहां पर नॉन वेज तो था ही नहीं, कभी भी प्याज लहसुन कभी नहीं था, ये पहले से ही था, इतनी पवित्रता। और बाहर का नहीं खाना ये ऑलरेडी था, पहले से था। थोड़ी बहुत चीजें थी जो जैसे कभी बच्चों को लेके गए रेस्टोरेंट में तो वहां पर खा दे तो अपने आप ही खत्म हो गई उस तरह से। और साथ में बीज रूप में मतलब मुझे ये अनुभव हुआ कि यदि हम बीज रूप का अभ्यास करते हैं तो हर आत्मा में ज्ञान पहले से ही नूंढा हुआ है, उसका पार्ट नूंढा हुआ, अपने आप एक्सकवेट होना शुरू हो जाता है। बीज रूप स्थिति के प्रैक्टिस से मुझे ये पता चला कि हम लोग कुछ नया नहीं इख्तियार करते हैं, ये रील है जो मर्ज और सम्मर्ज होती रहती है। हमारे ये वाले संस्कार बीज रूप में बैठने से मर्ज हो जाते हैं और सत्ययुगी संस्कार जो इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं, ये कुछ भी मिटता नहीं है। तो जब मैं बीज रूप का वो सारा अभ्यास लगातार करना शुरू कर दिया, अब वो लौकिक पढ़ाई तो छूट गई लेकिन कौन सी पढ़ाई की लालच आ गई, ब्राह्मण ये वाले। अब इसमें भी क्या करना, मुझे जैसे उसमें मुझे कंपटीशन में क्या है, मुझे अब इसमें मुझे बहुत आगे जाना है। अब यहाँ पर भी ग्रीड, उस ग्रीड ने मेरे को छोड़ा नहीं क्योंकि अभी मैं मुरली नहीं पढ़ती थी, बट हाँ मैं सेंटर के साथ जुड़ चुकी थी, एक सेंटर के साथ जुड़ चुकी थी और जहां पर भी मुझे सेवा के लिए बुलाती थी वहां पर चले जाना। दीदी इनसे नाराज भी होती थी कि ये बिना मीनिंग के ही चले जाते, बट दीदी को मैं बोलती दीदी मुझे सेवा का शौक है कि मेरा एक भी सेकंड मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं बहुत लेट आई हूँ ज्ञान में ऐसे ऐसे करके। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे दीदियों ने समझाना शुरू किया कि नहीं, ब्राह्मण लाइफ के कुछ नियम होते हैं, आप जिस सेंटर के साथ जुड़े हो उसी के साथ रहना है, ऐसे 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 इस तरह से करके। फिर धीरे धीरे ये सबमिसिवनेस में बाबा ने नेचर में सिखाई और वो जो ग्रीड थी वो इतनी वो बीज रूप का अभ्यास करते करते इतनी हद तक बढ़ गई। अब मैं आपको क्या चीज बता रही हूँ कि 100 गुना दंड क्या होता है, मैं उसका अनुभव सुना रही हूँ आपको। अब मैंने वो तो छोड़ दिया बाकी सारा कुछ, अब मैं इतनी अंतर्मुख में चली गई कि मुझे अब बाबा से सब कुछ सीखना है क्योंकि वो मुझे सिखा रहा है, तो मुझे उससे सब कुछ सीखना है क्योंकि ज्ञान अपने आप ही इमर्ज होता जा रहा था। मुझे रामायण की कथा अपने आप समझ आ गई। संगम युग में ये जितने भी त्योहार अभी हमारे हिंदुज्म में मनाए जाते हैं ये बेसिकली संगम युग का यादगार है, ये मुझे वहां से समझ आया। महाभारत की कथा, गीता का भगवान कौन है, ये मुझे वहां से समझ आया। फिर मुझे समझ आया कि शंकर का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, ये मुझे वहां से समझ आया क्योंकि मैं अभी मुरली का अध्ययन नहीं करती थी। और जब भी मैंने मुरली सुनने जाना तो मुझे कहना मुझे तो पहले ही पता है ये सब, मुझे ये लगना कि मुझे ये सब कुछ पहले ही पता है। जब मुझे ये सब कुछ होना शुरू हुआ तो मेरे मन में बहुत वैराग आ गया, मुझे लगा कि समय बहुत कम है, विनाश होने वाला है और मुझे बहुत आगे जाना है। हाँ, और बाबा ने बोला देह और देह के सारे संबंध भूलो, छोड़ने को नहीं बोला है, भूलो, भूलने के लिए बोला है। तो मैंने सोचा क्योंकि मेरे बच्चे ऑलरेडी उनको बाकी तो सब कुछ खुश था, मेरे बच्चे इन लॉज के साथ बहुत अटैच हैं, उनको तो ऑलरेडी मैंने एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा थी क्योंकि अब मेरे को किसी से शिकायत नहीं होती थी क्योंकि मुझे कर्म सिद्धांत समझा दिया था बाबा ने कि ये सब कुछ कर्म होता है। अब मुझे वो सारी चीजें भी डिसिफर होती हैं कि जो जो लाइफ में हुआ वो एक आत्मा का जीवन में आना ये भी पास्ट अकाउंट होता है, इसलिए ऐसा सब कुछ होता है। तो वो ये सब कुछ समझा, लेकिन ये जो ब्राह्मण जीवन की जो ग्रीड है ना ये अभी तक बहुत ज्यादा थी, बहुत हाइट पे जाना ऐसा मुझे इस तरह से रहता था। तो मैंने सोचा मेरे बच्चे जो है ना इन लॉज के साथ अटैच हो रहे हैं, होने दो, क्योंकि मुझे जॉब वगैरह छोड़ देना है, अपनी प्रॉपर्टी को वाइंड करके बच्चों के नाम करके खुद चले जाना है ब्रह्मा कुमारी में, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 वक्त का रोटी चाहिए और बाबा की याद चाहिए और सेवा, बस मुझे अब यही करना है, यही मेरा जीवन है। जैसे मैंने इस चीज को प्रैक्टिकली करना शुरू किया ना उससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं मेरे इन-लॉज को लगा कि ये अब भाग जाएगी, ये बच्चों को छोड़ देगी। तो जो मेरे को सर्विस करनी चाहिए थी, माने जो सर्विस होनी चाहिए थी, वो किसमें कन्वर्ट होना शुरू होगी, डिस सर्विस में। जो मेरी कॉन्फिडेंस से और मेरे अच्छा काम करने से वो बहुत खुश थे, वो अब कहीं ना कहीं इस चीज से डिटैच होने लगे कि ब्रह्मा कुमारी में जाने के बाद सारे लोग उधर चले जाते हैं, है ना। तो वो डिस सर्विस होने, जैसे डिस सर्विस होना शुरू हो गई ना, एक दिन मेरा योग बिल्कुल जीरो पे आ गया। जैसे वो जीरो पे आया तो मुझे ऐसे लगा कि ये क्या हुआ, मतलब ये नहीं होना चाहिए था, ये क्या हुआ। वो सीन बहुत भयानक था मेरे लिए। मैं सबको पूछ रही हूँ ये क्या हुआ, मतलब बड़े बड़े योगियों को, ब्रदर्स को पूछ रही हूँ इस तरह से। उन्होंने बोला ये चलता है, ये ऊपर नीचे चलता है। मैंने बोला नहीं, मैं तो उड़ती थी, ये इस तरह से कैसे। बोलते नहीं, आप फिर से मुरली पढ़ना शुरू करोगे। तो मुरली तो मैंने कभी अध्ययन किया नहीं था। अब मैंने धीरे धीरे फिर पूरी तरह से, अब मुझे फिर किसी ने ये समझाया कि अभी तक जितना भी आप कर रहे थे ना, ये सिर्फ बाबा आपको ऊपर की तरफ खींच रहा था। क्योंकि आज मुझे पता चलता है कि नास्तिक कंप्लीट अभी तक रही थी मैं, अभी तक मैं नास्तिक ही थी पूरा। इतने तक ज्ञान अगर बाबा ने मुझे नहीं समझाया होता तो आज मैं यहां नहीं होती। तो उसमें बाबा ने मुझे पूरा समझाया कि ये भाई ये समय ये चल रहा है, अब तुमने इस तरह से इस डिसिप्लिन के साथ चल रहा है, अब पूरा एकदम से जैसे मुरली पे फोकस, एकदम से क्लियर लाइन। दीदी के सानिध्य में ही पलना है, दीदी बोले की सेवा के लिए तो जाना है। वन में क्या सोचती थी, भगवान की सेवा है, जहां मर्जी चले जाओ। हाँ, जहां मर्जी चले जाओ, मैं कोई गलत थोड़ी कर रही हूँ अभी तक योग। यस, तो इस तरह से मैंने कितने 12 से लेकर के कहूंगी 17 तक बाबा की पालना मिलती रही, स्टेप बाय। हाँ, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप पे बाबा की पालना मिलती रही। और फिर बाबा ने पालना देने के बाद जो कमाई करवाई थी वो भी छीन ली। अब तुझे अपनी मेहनत से करना, ये तो मेरा प्यार तुझे मिल रहा था कि अब तुम्हें अपने पांव पे चलना है। ये मार्ग जो है ना, ये ऐसे नहीं कि उड़ के तुम आगे चली जाओगी सबसे, तुम्हें कमाना है अब। कब तक उंगली, हाँ, मोरवर ये मेहनत का मार्ग है। जितने भी तपस्वी यहाँ पर चल रहे हैं वो तपस्या करके चल रहे हैं। तुम कोई आसमान से उतरी हुई परी नहीं हो जी, तुम कोई आसमान से उतरी हुई परी नहीं हो। एक तो तुम्हें इतना संभाला मैंने, फिर भी तुम नखरा कर रही हो, है ना। देखा, तो इस तरह से अब आज मुझे पता चलता है कि मेरे जैसे नास्तिक को इस तरह की पालना देनी ही थी उसको, वरना में आती नहीं ज्ञान में, उसको तो मुझे बनाना ही था ना, है ना। तो देखो तो कितना ज्यादा लौकिकता में, कितना ज्यादा माया में लिप्त। अगर बाबा ने पहले ही छोड़ दिया होता तो शायद नहीं। फिर भी मैं सोचती हूँ पता नहीं बाबा ने क्या क्वालिटी देखी कि इतनी देर तक बाबा ने खींचा। पता नहीं वो क्या कुछ मात्र कोई चीज उनको मुझ में दिखी होगी, क्योंकि अभी तो वो हाँ, जितना बहुत ज्यादा डीप ज्ञान में गई ना, तो मैंने आप कैसे, मैंने वो अपनी हाइएस्ट स्टेज भी देखी, वो एक्सपीरियंस करी। जैसे द्वापर युग से सभी हम में से बहुत बड़े बड़े योगी हैं, तपस्वी हैं, सन्यासी हैं, बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हम आम लोग नहीं हैं। इवन कि बाबा का त्रेता का लास्ट बच्चा भी बहुत हाईएस्ट है। हाँ, और कोई नहीं पढ़ा सकता है, राइट। तो त्रेता का लास्ट बच्चा भी बहुत श्रेष्ठ है। बाबा बोलते हैं कि एक एक हीरा चुना हुआ है ना। तो वो जो जब मैं बहुत डीप उसमें थी, अभी मैं क्यों ज्ञान में चल रही हूँ, क्योंकि मुझे वो स्टेज देखनी है फिर से। वो बाबा ने वो जो स्टेज मुझे दिखाई ना, दैट वाज वेरी इंटेलेक्चुअल स्टेज, एज इट से गुरु स्टेज। हाँ, द्वापर के स्टार्ट दिन में ना, जैसे त्रेता से द्वापर शुरू होता ना, उस समय के, जैसे उस समय मुझे समझ आया कि वेद व्यास जी ने गीता, ये महाभारत कैसे लिखी होगी, कैसे वो ट्रांस में गए होंगे और वहां से सारा वो मैसेज ला करके तो वो लिसिफर करवा रहे थे सारा कुछ। वाल्मीकि ने कैसे लिखी होगी, तुलसीदास ने रामचरितमानस कैसे लिखा, ये सारी चीजें मुझे वहां से समझ आई। वरना मैंने कभी भी कोई आध्यात्मिक पुस्तक नहीं पढ़ी आज तक, कुछ भी नहीं। कभी महाभारत गीता नहीं पढ़ी, कभी रामायण नहीं पढ़ी, कभी नहीं। लेकिन हाँ, बचपन से अच्छा। फिर ये सब होने के बाद मुझे समझ आना शुरू किया हुआ कि बाबा मुझे पहले से ही बुला रहा था। कैसे, मैं ना खोस्ट में पढ़ी हूँ 5th स्टैंडर्ड से, नवोदय विद्यालय में, उधमपुर वहां पर है। हाँ, तो वहां से मुझे जाना होता था अपने घर की तरफ। तो एक ना वो बड़ा जंगल में एक स्कूल है, तो वहां से भी लोकल बस लेनी पड़ती थी। तो लोकल बस एक दिन मुझे नहीं मिली, तो मैं एक आर्मी ऑफिसर अपनी योगा लेकर के आया, तो उन्होंने मुझे बिठा दिया, बच्चे कहाँ जा रहे हो। तो मैंने बोला मुझे ऐसे ऐसे, मेरा घर रामनगर जगह है वहां पर है। तो उन्होंने बोला बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, मैं तुम्हें बिठा दूंगा गाड़ी में। तो वो आगे उधमपुर एक धार रोड है एक, वहां पर लेके आए तो मेरी गाड़ी नहीं मिली, बस नहीं मिली उस पर खड़ी मिली। तो उन्होंने बोला चलो आगे की तरफ चलते, जहां पर तुम्हारी बस होगी वहां से तुम्हें चला दूंगा। चलते के चलते के आगे राजयोगा मेडिटेशन सेंटर था, राइट। तो वो उतरे कहते अभी तुम्हारी बस तो है नहीं, तो चलो तुम्हें मैं कहीं पर लेके चलता। ये कब की बात है, मैं सेवन स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तब। तो मैं जो वो मुझे वहां ब्रह्मा कुमारी सेंटर देखे की, तो आगे मैंने ब्रह्मा बाबा का फोटो देखा, तो मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैंने किस पर ध्यान दिया, हम घर में माता वैष्णो को पूछते थे, माता वैष्णो के ऊपर मम्मा का फोटो। तो मुझे गुस्सा आया कि ये क्या हमारी माता के ऊपर किसी स्त्री का फोटो लगा दिया। मुझे थोड़े पता है, मुझे अभी पता चला कि ये कैसे लोग हैं, हमारी माता के ऊपर अष्टभुजाधारी माता और इसके ऊपर किसी स्त्री का फोटो लगा दिया इन्होंने, वो मम्मा का वो। तो वो मुझे, मैं बोला अच्छा होगा ये, कब 7-8 स्टैंडर्ड की बात है। फिर उसके बाद जैसे मुझे बचपन से एक ही प्रॉब्लम थी, क्या पढ़ना बहुत, लेकिन एग्जाम से इतना डर कि कुछ नहीं दिखता था। पीर बाबा भाग जाती थी कि हेयर पीपल पीर बाबा मेरे एग्जाम्स अच्छे होने चाहिए, या फिर शिव का एक मंदिर होता था वहां भाग जाती थी कि शिव जी इस बार आपने अगर मेरे एग्जाम्स अच्छे करवा दिए ना तो मैं आपको मान जाऊंगी। पता नहीं वो कैसे होता था, लेकिन कोई भगवान में आस्था नहीं कि मैं भगवान को पूज रही हूँ या कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद मुझे याद आता है कि 12th स्टैंडर्ड के मेरे एग्जाम्स खत्म हुए और मेरे फादर की जहां पर पोस्टिंग थी वहां पर हम गए। वहां पर एक बच्चा था, वो भी शिव का बहुत ज्यादा भक्त, उसने कुछ सिद्धि कर रखी थी। वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, आज मुझे पता चलता है कि योगी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं देते इसलिए वो अच्छे नहीं होते, लेकिन दुनिया क्या समझती है, वो हमें बुद्ध मानते हम उनको बुद्ध मानते। तो एक लड़का था, वो ना ऐसे फूक मार मार के ऐसे हाथ पे ऐसे करता था, वो पढ़ता था हाथ। मेरे फादर का पढ़ा उसने, फिर मेरा पढ़ा। उसने बोला कि अदृश्य शक्ति ना इसकी रक्षा करती है। उसने मुझे बोला कि इसके दुश्मन बहुत है लेकिन एक अदृश्य शक्ति इसकी रक्षा करती है। कब की बात है, 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम देके बीएससी फर्स्ट ईयर में थी मैं, तब की बात है। अब एमएससी की बात आती है लास्ट में। उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स ने मेरी मैरिज करवा दी। तो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बात है 2002 की। तो हम लोग ऑल इंडिया टूर पे गए हैं, लेकिन मेरा लाइफ में क्या था कि मेरा कभी ना किसी के साथ ग्रुप नहीं बनता था, क्योंकि वो लोग गॉसिप्स बहुत करते थे, पढ़ाई कम करते थे। तो मेरा कभी भी ना उन लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप नहीं होती थी, माना उनको ये लगता था कि घमंडी है ये। लेकिन मुझे पता था कि मुझे हमेशा एग्जाम की एंग्जाइटी रहती थी, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करती थी, माना मुझ में रहता था कि मुझे ये मार्क्स लेने ऐसा ग्रीड बोला ना मैंने आपको, वो बहुत ज्यादा रहता था। तो हम लोग वो टूर करके दिल्ली में हम लोग रुके हैं वहां पर रेलवे स्टेशन पर। तो मैं अलग से खड़ी हूँ एकदम, बाकी लोग सारे ग्रुप में गप्पे मारे, तो मैं वहां पर खड़ी हुई। छोटी सी कन्या मेरे पास, आज मुझे पता चलता है वो ब्रह्मा कुमारी थी, उस समय नहीं पता, व्हाइट वस्त्र में वो खड़ी थी, लेकिन एक कन्या भी थी। वो आई मेरे पास और उसने मुझे कुछ नहीं कहा, उसने मुझे अपना एड्रेस दिया और एक लाफिंग बुद्धा की चेन दी, लाफिंग बुद्धा, और मुझे उन्होंने बोला कि मुझे ना लेटर लिखना आप। फिर उसने कुछ मुझे परमात्मा के बारे में बताया होगा शायद, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो लाफिंग बुद्धा की चेन आज तक मेरे पास थी। ये तीन इंस्टांसेस कि मैं शिव के मंदिर क्यों भागती थी, या और साथ में रिहाड़ी सेंटर जिसके साथ मैं अभी जुड़ी हूँ वहां पर भी चली जाती थी मैं, ये नहीं मुझे पता था कि वहां क्या होता है, ये भी मुझे पता नहीं था, अचानक से ही वहां जाती थी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रहता था। अब जब मैं बाबा के ज्ञान में आई तब मुझे पता चलना शुरू किया कि तीन इंस्टांसेस क्यों हो रहे थे, कि बाबा जैसे पहले भी, फिर वो रिहाड़ी सेंटर मेरा जाना अनजान में वो सिर्फ उसी एंग्जाइटी में, और दिल्ली में उस बहन का मेरे साथ मिला। हालांकि उसके बाद 2002 में ही मेरे पेरेंट्स ने मेरी मैरिज करवा दी और मैं 2012 में सही मैंने बोला जाए तो 14 से मैं बाबा के कान पकड़ के बाबा ने इस तरह खींचा है। तो मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत जड़ बच्चा थी बाबा का जिसको पालना देनी पड़ी, नहीं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिन्हें बहुत भक्ति की है ना, जिन्हें बहुत भक्ति वो फटक से परमात्मा को पहचान जाते हैं। तो आज मुझे होता है कि बाबा आपने मुझे इतनी दूर से बचाया तो मैंने तो कोई सेवा की ही नहीं है अभी तक, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अपना अनुभव शेयर करना चाहिए, स्पेशली वो वाला अनुभव जहां पर बाबा ने मुझे रीमैरिज से बचाया था। क्योंकि आजकल बहुत सारी कुमारियां बेचारी ना सोचती हैं कि जीवन साथी में बहुत अच्छा मिलेगा इस तरह से। 100% लिख के देती हूँ कि कोई भी आत्मा आपको जीवन में साथ नहीं दे सकते, इस समय सारी आत्माएं डिफ्यूज हो चुकी हैं, सारी आत्माएं किसी के मतलब क्रिश्चियनी उनके पास ताकत ही नहीं, आपको क्या देंगे, वो खुद मांग रहे हैं बेचारे। जैसे वो आत्मा मेरे साथ खुद रहती थी क्योंकि उससे मेरे से कॉन्फिडेंस मिलता था उसको, वो आत्मा मेरे साथ इसलिए रह रही थी क्योंकि उसको मेरे से कॉन्फिडेंस मिलता था कि ये कैसे है। और जब मैं उसके साथ आध्यात्मिक बातें कर रही हूँ ये सब तुझे कहां से आता है, मतलब वो आत्मा हैरान होती थी कि मुझे ये सब बातें कहां से आती, जबकि मुझे कहां से आती थी। बिंदु में चिपक जाओ, आपका खुद का डिवाइन इंटेलेक्ट जाग जाता है। आप बिंदु के साथ चिपकेंगे, वो अपने आप ही आपकी वो दिव्यता ना एक्सकेवेट कर देगा, वो रील घूमना शुरू हो जाएगी। इस तरह मुरली के प्रति प्यार अब बढ़ा है, अब बढ़ा, हाँ अब बढ़ा। जब कौन सा बोला, वही तो दंड, वही तो दंड की मैंने जब, अब ग्रीड कौन सी आ गई मुझे, मुझे ये ग्रीड आई कि अब मुझे ब्राह्मण लाइफ में आगे जाना है, इस पढ़ाई में 100% देना है। सो दंड की मैंने सोचा कि मैं अपनी फैमिली छोड़ दूंगी, बच्चों को लॉस के पास रखूंगी, प्रॉपर्टी भी दूंगी उनको, खुद चली जाऊंगी ब्रह्मा कुमारी सेवा करूंगी, लेकिन वो डिसर्विस हो गई ना, फिर गिरा ना योग। देखिए बाबा तो कहता है, लेकिन योग में ही माया आती है सिस्टर, तभी तो चलता है। जब आपको योग में ऊपर चले जाते हो ना, आपको पता नहीं चलता, आपको हैरान करेगी। बाबा बोलता है माया आपको हैरान करेगी, फटाक से नीचे गिरा देगी। हाँ बाबा से तो मिले 2014 में मिले थे, फिर उसके बाद तो मैं आती रही। हाँ सिक्री वो पहली बार मिली, फिर उसके बाद आती रही, मैं तो भाग आती थी वहां से। फिर यहाँ पर आ करके ना बाबा मुझे वापस भेजा था, जैसे वहां पर जो योग लगना ना घर पे, वो यहाँ लगना बंद हो जाए। जैसे बाबा मुझे कह रहे हैं लॉस्ट, वापिस जो यहाँ रखा है वहां रखो, वहां रहो, बार बार इधर आ जाते हो। फिर तुमने बार बार आना शुरू किया कि मुझे तो बाबा मिला है, मुझे भगवान मिला है, मुझे इस लाइन में आगे चलना है। तो बैलेंस नहीं रख पा रही थी अभी भी मैं, लौकिक और अलौकिक का सुनती थी कि वो लौकिक और अलौकिक का बैलेंस रखना है, लेकिन अब मैं कम्प्लीटली अंतर्मुख होगी कम्प्लीटली कि मुझे अब कहां जाना। क्योंकि साधन मैंने आपको बोला ना, मैंने वो अपना द्वापर का वो स्टेज देखा, वो इतना ब्यूटीफुल स्टेज था, वो इंटेलेक्ट देखा मैंने अपना, इंटेलेक्ट बुद्धि जब पूरी खुल गई, जब मुझे सब कुछ पता चल गया, सब डिसिफर हो गया, वहां से मुझे पता चला कि वाल्मीकि ने कैसे रामायण लिखी होगी, वाल्मीकि जी को कैसे रामायण, कैसे डाकू से वो ऋषि बने, क्योंकि उसके साथ जो भी जुड़ेगा ना वो उसको धो डालेगा एकदम से, कंप्लीट उसको क्लियर कर देगा, वो नेगेटिविटी उसकी कंप्लीट क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिर से जब हम लोग गिरते हैं तो फिर से हमें उस पर मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरह से 6 साल तक समझो, 5 साल तक बाबा ने इतना प्यार से पाल पाल के हाँ योग से पाल के।
तो अभी आप सर्विस करते हैं?
हाँ अभी मैं जॉब करती हूँ, दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल रही हूँ, बहुत अच्छे से फैमिली अब मैं बैलेंस करके चल रही हूँ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। नहीं नहीं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं नहीं, अब तो बाबा ने मना कर दिया ना, अब तो ये वाली पढ़ाई अभी वो तो उसकी मेहनत अभी स्टार्ट हुई है, अभी बिगिन हुआ है वो जर्नी।
आपने मुरलियां कब से रेगुलर पढ़ना शुरू की
है? ये 2000 समझ लो कि नवंबर 2017 से।
तो अभी तक कितनी मुरलियां पढ़ ली आपने?
काफी पढ़ ली है हाँ, लेकिन रिवीजन ताकि उसका वो कहते आपको एकदम से मेमोराइज हो जाए, सबकॉन्शियस माइंड पे प्रिंट हो जाए उसका, तभी वो आपका एक्शन में आएगा, है ना। इस तरह से मैं लेक्चर इन जूलॉजी जे एंड के गवर्नमेंट में लेक्चर इन जूलॉजी हूँ, स्कूल एजुकेशन, हाँ जी गवर्नमेंट जॉब है। हाँ जी, और मेरा जॉब इतना इजी है, सिंगल क्लास अ डे अभी भी जीकर, सिंगल क्लास अ डे एंड सच ए हैंडसम सैलरी, बहुत अच्छी, बाबा गिव्स मी 80,000 पर मंथ। हाँ, और मेरा स्कूल ना सिटी से बाहर है, जहाँ पर बहुत सात्विक माहौल मिलता है मुझे, एकदम ग्रीनरी में। हाँ एकदम, 10+2 है स्कूल एजुकेशन में। अभी तो मना इन द सेंस कि एक एक इंस्टांस जो है ना वो यूजुअली सारा कुछ करके सुना दिया है, लेकिन अभी अनुभव है कि अब मैंने ज्ञान को कितना किस लेवल तक समझा है, क्या मुझे पता चला, बीज उपस्थिति क्या होती है, किस तरह से। फिर मैंने ब्रह्मा बाबा का भी एक्सपीरियंस करा। अच्छा, फिर मेरे से बाबा ने मुझे निमित्त बना करके बहुत सारी आत्माएं निकाली वहां से। एक बाबा ने एक सेवा अरेंज करवाई जिसमें बाबा ने मुझे अकेले, बाबा ने मुझे पता नहीं कैसे हिम्मत दी, 3 दिन में ही इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, पुणे से दीदी भी आ गई और डिप्टी CM उसके चीफ गेस्ट बने। ये तो इतनी बड़ी सेवा भी ऐसा ना अरेंज होना काफी टाइम लगता है, और 3 दिन में ही बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग गई, बड़ी बड़ी वो उसमें इतना पावर बाबा ने दिया, होर्डिंग्स लगा दी पूरी जगह पर, पूरे जम्मू में एकदम से उसका पब्लिसिटी होगी कि यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा है, और उसका रखा भी क्या दी मेडिटेशन फॉर होलिस्टिक लाइफ, एक बहुत नया सा एक टॉपिक था। जम्मू में इस तरह के माइंड मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स अभी तक नहीं होते हैं। सिस्टर सरिता थी पुणे से। हाँ, कश्मीर में भी लोग सुनते हैं, दीदी को सुनते हैं, सिस्टर शिवानी को बहुत सुनते हैं लोग। हाँ, बहुत अच्छे से सुनते हैं। तो इस तरह के ज्ञान की गहराई भी बाबा ने पूरी डीप करके बाबा ने समझाई, कहाँ कहाँ पर आपको प्रिकॉशंस लेनी है, किस तरह से। अभी बार बार मुझे वहां पर कोताहल हो रहा था कि ये बात मुझे बतानी है कहीं ना कहीं, ताकि ये जन तक पहुंचे, यही मेरी सबसे बड़ी सेवा है। मना कैसे पता चले कि किस तरह से। हालांकि अच्छा, फिर वहां से एक इतनी सुंदर आत्मा निकली, वो गृहस्थी। मैंने आपको बोला बहुत सारे योगी छुपे हैं, सामने प्रत्यक्ष नहीं है, वो भी गृहस्थी है, माता है वो। और उसकी संकल्प सिद्धि देखिए, एक बार उसके सामने ना किसी घर में आग लग रही है, और मैंने ये देखा है ज्ञान में जो जितना भोला है ना वो उतना ही आगे है। वो बहुत भोली है ना, वो उनका संगीता नाम है दीदी का। आगे ना आग लगी है, तो वो अपनी बेटी है उनकी तीन, तो आग लगी तो उन्होंने बोला कि बाबा देखो किसी घर में आग लग रही है, प्लीज आप ना कुछ मदद करो। जैसे बाबा उनको ना संकल्प सिद्धि का प्रैक्टिस करवा रहे हो, द मोमेंट उन्होंने ऐसे किया तो इतनी देर में ना पता नहीं बारिश होना शुरू होगी या कोई पाइप लेके आ गया और उसकी आग बुझा दी कुछ इस तरह से। वो इतने सुंदर सुंदर मुझे इंस्टांसेस बताती है कि ऐसे बाबा ने आज मुझे ये कहा, आज मुझे कहा। तो कई बार जब मेरा योग नीचे जाता तो मैं उनको बोलती दीदी जा करके पूछना जरा बाबा को क्या बोलते हैं। बिंदु तो अभी है साथ में, लेकिन अभी लेकिन अभी बाबा मेहनत करवाता है, अभी बाबा मेहनत करवाता है। हाँ हाँ, वो बाबा ना आपसे अब आप संस्कारों की प्रैक्टिस करवाएगा। जैसे पहले, हाँ पहले मैंने ऊर्जा खींच ली तो उसको मिसयूज करना, फिर मैंने मिसयूज करती थी ना उस ऊर्जा का। हाँ है ना, कुछ ना कुछ है शायद, शायद बाबा की पता नहीं बाबा की क्या। लेकिन मैंने अभी तक का जितना भी जीवन है वो वहां से लेकर के शायद पता नहीं, मैं वही सोचती हूँ कि अगर बाबा नहीं होता तो पता नहीं क्या होती लाइफ है ना, क्या जिंदगी अकेले। गिफ्ट है ना, सबके ही होंगे क्योंकि बाबा का कोई भी बच्चा ऐसे नहीं है, सबके बहुत है। अरे थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। अगर ये काम हो सके किसी के तो मेरी तो मैं बाबा को बोलूंगी यही सर्विस है ना। ओके थैंक यू सो मच। ओम शांति।